الجن يا صاحب السماء
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين الہی جنتن بالهدى والهمن التقوى بہت ہی ڈیفرنٹ موضوع اور شاید بہت ہی پریکٹیکل ان دا سینس کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جسے بہت ہی مختصر سا تجربہ ہے میرا اس حوالے سے لیکن شاید میری ذاتی رائے تو یہ ہے کہ اسے بہت انیشل سٹیجز پر مدارس میں پڑھا دینا چاہیے. جو موضوع آپ لوگوں کو موضوع کی بریفنگ ہے نہیں اللہ کتنے انوسینٹ بولے کھانے پینے کی بریفنگ ہے باقی کسی چیز کی ہو نہ ہو. اب موضوع میری تو اردو تباہ حال ٹائپ کی ہے. ڈاکٹر صاحب نے جو موضوع دیا ڈاکٹر عابد زیدی صاحب نے وہ یہ ہے کہ اسلامی احکام, میرے الفاظ میں ان کا جملہ, اسلامی احکام کو گھروں میں نافذ کرنے کے عملی اقدامات. لگا نا مشکل لگا نا, مجھے بھی سوچ پڑ گئی تھی کیسے میٹر کہاں سے لاؤں گی. اسلامی احکام کو گھروں میں نافذ کرنے کے عملی اقدامات. مثال کے طور پر یہ ایک کامن سا پرابلم ہے, ہم سب اس پرابلم سے, ہم سب سے مراد میجورٹی, اس پرابلم سے اس وقت اس پرابلم میں مبتلا ہوتی ہے جب وہ کسی درس, کسی مجلس, کسی حادثے, کسی اللہ کی بلیسنگ کے نتیجے میں وہ دین کے راستے پر چلنا چاہتی ہے لیکن پچھلی زندگی کے اندر دین ویسا نہیں تھا. اچھا ہم بدل گئے لیکن ہمارے ساتھ ہمارے گھر والے سارے نہیں بدلے. اسپیشلی بہت زیادہ افیکٹو ہیں دو رشتے, ایک والدین کا اور ایک لائف پارٹنر کا. اولاد کو تو آپ نے دو چانٹے بھی لگا دیے, کان بھی کھینچ لیے, مرغا بھی بنا دیا, بہت کچھ کر دیا, لیکن آپ یہ دونوں رویے انڈرسٹوڈ سی بات ہے نا, ناؤز بلّہ کوئی والدین کے ساتھ اپنا سکتا ہے نا لائف پارٹنر کے ساتھ اپنا سکتا ہے. اماں ابا کے ساتھ وہ ساسو سسر آٹومیٹیکلی آ گئے. روایت ہے الاوا و ثلاثہ, باپ تین ہیں, پہلا جو تمہیں پیدا کرتا ہے, دوسرا وہ جو تمہیں تعلیم دیتا ہے, اور تیسرا وہ جو تمہاری تجویز کا سبب. گھر کے بڑے اور ہمارے جیسی جنریشن. اچھا شوہر کے ساتھ اور بھی بہت سارے رشتے آ جاتے ہیں جو شادی شدہ خواتین ہیں. مثال کے طور پر بہت ساری بہنوں کی میں اس مشکل کو محسوس بھی کبھی کر سکتی ہوں باوجود اس کے کہ میں خود اس مشکل میں کبھی مواجہ نہیں ہوئی. ہمارے گھر میں ایک ٹی وی ہے فار ایگزامپل, میں نے کہا میرے ساتھ یہ پرابلم نہیں ہے, ہمارے گھر میں ایک ٹی وی ہے. جٹھانی کہتی ہیں اوپن کیبل ہونی چاہیے, مجھے وہ پتہ نہیں کون سا اسٹار پلس کا ڈرامہ دیکھنا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں ایف سی این ہونا چاہیے, پی سی این ہونا چاہیے. ہم ٹی وی کو میوٹ کرتے ہیں, وہ ٹی وی کا والیوم کھولتی ہیں. ہم بچوں کو شب جمعہ حدیثے کے ساتھ کے لیے بھیجتے ہیں, جاؤ میرا بچہ جلیبیاں لے کر آؤ 50 روپے کی, ابھی حدیثے کے ساتھ پڑھتے ہیں. وہ تھوڑی دیر میں اندر چھیا کے پروگرام چل رہے ہیں اور سارے بچے حذائف الاپرا چھوڑ کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کیا کریں. بڑی امی کے ساتھ بڑا مزہ آ رہا ہے, وہ تو کمنٹس بھیجتی ہیں نادیہ خان شو پر, ان کو تو پچھلے ڈریسز بھی یاد ہیں سارے کے سارے. مجھ سے کہہ رہی تھی کتنی کمزور ہو گئی ہے, لگتا ہے اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے, جم جوائن کر لیا ہے, ڈائٹنگ شروع کر دی ہے. اب آپ مجھے بتائیں جب بچے ایسے انٹرٹین ہو رہے ہوں, محظوظ ہو رہے ہوں کسی ایسے لائیو شو سے, تو آپ ان کو گھسیٹ گھسیٹ کے لائے دراؤ دعائیں کمیل پڑھیں تو وہ رسیاں لڑا کے بھاگ جائے گا. نند بعض گھروں میں غیر شادی شدہ نند ہے اور ان کا انفلوئنس بھی ہے, ان کا اچھا خاصا عمل دمل دخل ہے. ہم کہتے ہیں کہ گھر میں یعنی چھوٹی چھوٹی سی چیزوں سے بات شروع ہوتی ہے اور بڑے بڑے جھگڑوں پر ختم ہو جاتی ہے. ہمارے یہاں افطار پارٹی ہے, گیٹ ٹوگیدر ہے ساری نندوں کے, جیسے ہوتے ہیں نا. میں نے کہا معاشرے کا ایک درد ہے اور میں بھی مریخ سے نہیں آئی, پچھلے 6 سال سے کراچی میں اور اس درد کو دیکھتی ہوں, محسوس کرتی ہوں. آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم ایسا کرتے ہیں, ڈرائنگ روم میں اتنی جگہ ہے کہ سینٹر ٹیبل کو ہٹا کر وہاں مردوں کے لیے دسترخوان بچھا دیا جاتا ہے اور جو لاؤنج ہے وہاں ہم زنانہ سسٹم کر لیتے ہیں. تو گھر میں 6 انفلوئنس والے کھڑے ہو جاتے ہیں, یہ کیا تماشا ہے؟ کیا آپ دو الگ الگ جگہ پر جائے گا, سرونگ میں پرابلم ہوگی, یہ ہوگا وہ ہوگا, ایسا کرو ایک ہی جگہ سب کے لیے دسترخوان لگا دو, ایک ہی جگہ سب کے لیے دسترخوان لگا دو. اس ایک ہی جگہ کے دسترخوان کا بعد میں بعض اوقات کیا نتیجہ نکلتا ہے, ایسے نامناسب ہنسی مذاق شروع ہو جاتے ہیں, محرم نامحرم کا فرق بھول جاتے ہیں, बैठने में, अंदाजे निशस्त बरखास्त में, अंदाजे गुफ्तगू में हमें याद ही नहीं रहता कि ये अच्छा ये भी नामहरम था, हाँ याद ही नहीं रहा। वो सुबह तो मैडम फुलानी ने और सर फुलान ने कहा था दर्स में कि यूं नहीं करना। अच्छा ऐसी गेट टुगेदर्स नॉर्मली या वीकेंड नाइट पे होते हैं या संडे वाले दिन रात में होते हैं। दोपहर में आप नामहरम के साथ इख्तलात पर एक जबरदस्त हराम निगाह पर लेक्चर सुन के कहीं रात में घर में ऐसी दावत हुई कि बहरहाल हम शायद इस गुनाह में मुब्तला हो गए। तो ये बहुत कॉमन सा इशू है, इस इशू से कोई फरार नहीं, कोई नहीं कह सकता कि नहीं। मैंने कहा ना सिवाय वहां पर कि जहां पर बाज फैमिलीज ऐसी हैं जहां पर दोनों की कोऑर्डिनेशन है। मैंने आपकी खिदमत में तीसरे या चौथे लेक्चर में अर्ज किया था मियां बीवी गाड़ी के दो पहिए हैं, लेकिन अगर एक ट्रैक्टर का और एक साइकिल का हो तो दोनों कभी भी बैलेंस होकर नहीं चल सकते। दोनों को एक ही जिंस का होना पड़ेगा, दोनों को एक ही साख का होना पड़ेगा। अच्छा मजे की बात है, जब हम मदरसे आते हैं तो हमारी सोच के अंदर एक तब्दीली है, हमारा दिल नेकी की तरफ माइल है। अब सिर्फ घर के अंदर कराने की बात नहीं है, हदीसे के साथ पढ़ी जाए या नादिया देखी जाए, बाहर जाने के लिए आउटिंग के लिए भी यही बात है। आपने अब जैसे हम शिया नशीन इलाके में रहते हैं, आप में से बाज़ मोमिना शिया नशीन इलाकों में रहती होंगी, शबे जुमा हमारे पीछे हर वक्त लाइट चलती रहती है, फुला आंटी का बरसी की मजलिस, तो सोयम की मजलिस, तो चलीसे की मजलिस, मजलिसे हैं महफिल शाह खुरासान में। दो गिरोहों में बढ़ जाते हैं घर वाले, एक वो जो चाहता है शबे जुमा है तो मस्जिद में चला जाए, वहां पर नमाज जमात बरपा हो रही है, नमाज जमात का सवाब ले ले। एक गिरोह कहते हैं चलो सारे झील पार्क चलते हैं, अस्करी पार्क चलते हैं, जमजमा चलते हैं, सनबाग चलते हैं। तो ये बहस हमेशा से रही है, हमेशा रहेगी और अजल तक। मजे की बात है कि मैंने तो दो बड़ी मेजर प्रॉब्लम्स को जिक्र किया, हम अपनी औलाद को भी वैसे ट्रेंड नहीं कर पाते। फर्ज करें मैं उसे एक गाने का अजाब बयान करती रहूं और मेरे शौहर उसे वॉकमैन ले दे, चल तेरी माँ को पता भी नहीं चलेगा बेटा तुम क्या सुन रहे हो, वो तो ऐसी बोंगी सी है, उसको थोड़ी पता है MP3 कैसे हैंडल होता है, 18वीं सदी की मखलूक है। ऐसा करो शुरू में चार मीर हसन मीर के कसीदे डाल लो, जैसे ही अम्मा बटन ऑन करेगी आएगी आवाज या करीमा, उसके बाद आगे तुम्हारी मर्जी जो मर्जी डालो। यानी ये एक आज की माँ का दर्द है, जो वसाइल उसकी औलाद के पास है वो उसे इस्तेफादा करना नहीं जानती। यानी मुझे नहीं पता मिसाल के तौर पर MP4 कैसे हैंडल होता है, कैसे चलाया जाता है, मुझे नहीं पता कि कैसे मैं हिस्ट्री चेक कर सकती हूँ कि मेरे बच्चे ने मेरी गैर मौजूदगी में कौन से वेबसाइट्स को विजिट किया है। हमारा प्रॉब्लम क्या है, आज की माँ इतनी इनोसेंट है कि हमारी एक वर्कशॉप थी 3-3.5 साल पहले मौलाना सादिक हसन साहब के साथ, तो एक बड़ी प्यारी बात कही, कहा बाज माँ बाप इतने इनोसेंट हैं कि TV पर चाइल्ड लॉक बच्चों से लगवाते हैं। यानी बच्चे हैं ऐसे, गलत नहीं कह रही, जिनके हैं ना 14-15 साल के उनको अंदाजा है कि मैं बिल्कुल गलत नहीं कह रही। बच्चे आजकल कैसे हैं करके आपको गुच्छा दे जाते हैं, झामा बेचारी समझी यहाँ तो इतना मासूम हो गया, अल्लाह का शुक्र है बड़ा नेक हो गया है, पिछले दिनों से आपको नहीं पता। वो जरा सी दाढ़ी रख लेता दोस्तों के सामने वो करने के लिए, अपने आप को शोक करने के लिए आपको जाहिर करता है जैसे मुल्ला सदरा की रूह इसके अंदर घुस गई है, ये मुकद्दस दबेली बन रहा है। तो किस तरह से हम जब दीन सीख रहे हैं, ठीक है मैं आप जितनी मोमिनात बैठी हैं, फिर सलाम उन मोमिनात को जो संडे को घर से निकलते हैं, और सात सलाम उनको जो मुझसे 1.5 घंटा पहले से निकली हुई और यहाँ पहुंची हुई हैं। मैं तो फिर 3:10 पे घर से निकली हूँ, आप में से बहुत सारी 1:10 पे भी शायद निकली हूँ, ठीक है उन सारे सलामों का आपने रिसीव कर लिया। हम यहाँ पर जमा है दीन सीखने के लिए, ये दीन हमारे साथ हमारे घर तक जाता है, लेकिन या इस दीन को झाड़ दिया जाता है, तुम तो अपनी तकलीफ बंद करो बस शुरू हो गई। पता नहीं कौन सी औरतें होती हैं जो अच्छी अच्छी बातें करती हैं शौहरों के पास बैठ के, बच्चों के पास बैठ के, इसके पास अजाब की हदीसें होंगी, इसके पास उसालाओं की बातें होंगी, इसके पास मैयत के काम होंगे, छोड़ो रहने दो सारे चलते हैं। चलो बच्चों कौन कौन बड़ी फुप्पो के यहाँ जा रहा है, बच्चों ने सोचा घर में रहे तो अम्मा का वो मदरसे के 3 घंटे के लेक्चर कम अज कम 2.5 घंटे तक सुनने पड़ेंगे, बाबा मैं सारे के सारे चले गए। अब हम वहां दीन का प्याला लेकर बैठे हैं कोई हमसे लेने के लिए, हम इन लेकर आए थे, हम इन देना चाहते थे लेकिन किसे दे। वो अल्लामा इकबाल ने एक जगह दर्द बयान किया है वो बांगे दरा में, कि बांगे दरा में अपने एक दर्द बयान किया है वो, जब वो शिकवे की नज़्म में कि ऐसा ऐसे लोग लेने वाले नहीं, मैं तो देना चाहता हूँ कोई लेने के लिए तैयार नहीं, ऐसी सूरत हाल है। तो इस मसले के हल के लिए, इस परेशानी को खत्म करने के लिए कि हम मुसलमान हो गए, यानी मैं कभी कभी जाती तौर पर दोस्तों के साथ हम बैठे थे तो हम कहते हैं जिस जमाने में नए नए मुसलमान हुए थे ना, तो अगर कोई अननोन हो ना फ्रेंड सर्कल में तो कहते हैं क्यों पहले आप हिंदू थी। मैंने कहा नहीं पहले हमारा 2 नंबर का इस्लाम था। कैसा इस्लाम था, कैसी वो जॉर्जेट के दुपट्टों वाली नमाजें थी, अल्लाह माफ करे जिनका नमाज़ सही था, ना क़िरात सही थी, कुछ भी तो नहीं था, सिर्फ डायरेक्शन ऑफ क़िबला थी और अल्हम्दुलिल्लाह सूरा थी और कुछ नहीं था उस नमाज में। कैसे कैसे नाउज बिल्ला रोजे माँ ने रखवा दिए, स्कूल में जाकर पानी पी लिया, इतने इनोसेंट। अल्लाह बाज मुझे ताजुब होता है जब कोई मोमिना स्पेशली अबव 40 कहते हैं ना, हम तो शुरू से मैंने कहा रहने तो कुछ ना कुछ साल हमने जहालत में गुजारे, किसी ने कम किसी ने ज्यादा, हमारा साबका यानी नॉर्मली हमारा साबका जो है, अब आप मुझे अबव 40 ना खुदा ना खासा समझ लीजिएगा, लेकिन अबव 40 में से कुछ ना कुछ साबका है ऐसा जो गुनाहों की दलदल में थे, पता नहीं किस किस के गाने सुना करते थे, किस किस की फिल्में देखा करते थे, रात को क्या क्या कैसी कैसी बातें किया करते थे। अल्लाह का एहसान, अल्लाह ने हमें सही माना में इस्लाम की तरफ रहनुमाई की। अब हम इस रहनुमाई को दूसरों तक कन्वे करना चाहते हैं। ये कन्वे करने की सोर्सेस, अब ये मुझे नहीं पता, मैं नहीं कह सकती कितनी, आज ही खत्म कर दूंगी या अगले संडे फिर आपके जहन को पिलपिला करने के लिए आ जाऊंगी, कुछ नहीं कहा जा सकता जी। आज खत्म नहीं कीजिएगा, मुझे खुद भी डर है जितनी मैंने इसमें पॉइंट्स लगाए हैं। एक्चुअली बेसिकली मैंने आपसे कहा ना, हर किसी को कन्वे करने का स्टाइल भी अलग है। आप बड़े को बात चीजें समझा बुझा सकती हैं, बच्चे को नहीं समझा बुझा सकते। बच्चे को जिस चीज तरीके से हैंडल कर सकते हैं, आप मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं, अलमिये हैं मेरे पास, बाज़ुकात मोमिनात फोन करती हैं किसी भी पाकिस्तान के किसी कोने से, दुनिया के किसी कोने से, मदरसे में पढ़ी हुई हमारी सुलझी हुई तालिबात, अच्छी दीनदार, सात सात आठ आठ साल अच्छे मदरसों में पढ़ा है, ससुराल गई है, 13वें दिन से जो झगड़े शुरू हुए अभी तक झगड़े चल रहे हैं, नई नई शादी भी, अब नन भी हैं, सगी खालाजात बहन भी हैं, इन्होंने उनसे कह दिया आपका मसा गलत है, सामने वाली को, अच्छा वो 47-48 की खातून थी, सादात में से थे, अच्छा सादात को एक जोन ये भी होता है कि दीन चूंकि उनके जद का था तो उनके अंदर ज्यादा है, खैर दोनों पार्टियां सैयद थी, तो जज्बत की बहस सुनी है ना, हम भी सैयद आप भी सैयद वाली बात है। इन्होंने उनसे कहा कि क्या मतलब, कहा भाई ये आपका मसा बातिल है, मसा बातिल है, इसमें वजू बातिल है, चाहिए पूरी पीछे चेन चली जाती है, आपके पीछे नमाजें बातिल हैं, कोई फकीर नहीं कहेगा ना कि आपका वजू मसा बातिल था तो आपके पीछे नमाजें, यहाँ पर सिर्फ हाथा पाई नहीं, सब कुछ हो गया। अच्छा आपके ख्याल में अमर बिल मारूफ का ये मौका था, तीसरे या चौथे दिन की, चौथी की दुल्हन खड़ी होकर अपनी बड़ी नन से कहे तो कहने लगी हमें मदरसे में सिखाया गया था आपको अमर बिल मारूफ करना है। मैंने कहा अमर बिल मारूफ की शराइत भी थी, तरीके भी थे, करीने और सलीके भी थे, इस तरह से थोड़ी मैं अगर अभी आपसे कहूँ, आप माशाल्लाह मदरसे का मोस्ट सीनियर ग्रुप है, अभी मैं आपसे कुछ कहूँ तो एक लम्हे के लिए आपके दिल में खटका जरूर आएगा कि ये बड़ी है ज्यादा शरीयत जानने वाली। इंसान की फितरत है, वो अपने आप को सबसे बेहतर समझता है, ये इंसान की फितरत है, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते, इसका इनकार नहीं कर सकते कि हमारे दरमियान बैठी हुई हर मोमिना समझती है वो सबसे ज्यादा मुशक्कत सहकर यहाँ तक आई है, बाकी सब तो ऐश में। हर किसी के रास्ते में उसकी अपनी करबला होती है, हर किसी के रास्ते में उसकी अपनी करबला होती है, उसे पता है और उसे पता होना चाहिए हाउ टू हैंडल इट, हाउ टू टैकल इट, उसका टैलेंट है कि वो अपनी करबला को किस तरह से गुजारे। जमजम हमेशा एड़ियां रगड़ने के बाद निकला करता है, ऐसे तो हजरत हवा को भी 7 चक्कर दौड़े लगवाई फिर कहीं जाकर, वरना पहले चक्कर पर ही दे देता अल्लाह में, ये बेचारा इस्माइल एड़ियां रगड़ा, ये लो हजरत हाजरा, ये हमने तुम्हारे हाजरा ने चक्कर लगाए, इस्माइल ने एड़ियां रगड़ी, फिर जमजम ही जमजम है, आपको नो पेन नो गेन। यानी हम में से हर शख्स को अपने हिस्से की करबला खुद हैंडल करनी है, करबला से मुराद मुश्किलात से भरा हुआ रास्ता है। और लास्ट जब मैं सेकंड यानी 2 हफ्ते पहले आपकी खिदमत में आई थी, मुजाहिम हुई थी, तो एक रिवायत जो मैंने बयान करनी थी, मैंने अपनी डायरी पे हाईलाइट भी की थी कि मदरसातुल कायम की तालिबात की अमानत रही इंशाल्लाह, वो मौला के एक जुमले का मफहूम था, अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम सल्ली अला मुहम्मद व आजिल फरज, मौला के जुमलों का मफहूम मेरे अल्फाज में, मौला कहते हैं हक के रास्ते पर चलो तो तन्हाई से वहशत ज्यादा नहीं हो जाती, छोड़ देंगे सब, हक के रास्ते पर चलो तो तन्हाई से वहशत ज्यादा नहीं होना, सब छोड़ देंगे, आहिस्ता आहिस्ता दीन के नाम पर टुक 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 पीछे पीछे पीछे, हक का रास्ता है तो इसमें वहशत और तन्हाई है, तुम अपने आप को स्ट्रांग रखो, तुम आखिर तक जाओ, फिर उसके बाद परवरदिगार आलम की सुन्नतें देखो। भी हम मर्जी एकेडमी में अदल की बहस चल रही थी, उसमें आका किराज ने बड़ी प्यारी बात की है, आंखें बंद करके देखो जिन्होंने मुश्किलात सही वो किन कामयाबियों तक पहुंचे, तुम्हें खुद ही सबर आ जाएगा। जिन लोगों ने मुश्किलात सही दर्द सहे, यानी एक मोमिन ऐसी है कि जिसका शौर से उठा गया था, उठो नमाज शब की फजीलत का वक्त जा रहा है, उठ के नमाज शब पढ़ लो, ये मोमिना नवाजे से पढ़ रही है। मिसाल के तौर पे आयतुल्ला सिस्तानी की कोई बहू है और आ गए रहबर की कोई भांजी है, भतीजी है, एक अच्छे दीनदार माहौल में, एक आइडियल फैंटेसी लाइफ में आप तसव्वुर करें, शोहर भी तहज्जुद गुजार है और बेटे भी तहज्जुद गुजार हैं, सारे घर में हलचल का सा समा है। ये मोमिना नमाज शब पढ़ती है, मुझे नहीं पता, मुझे अल्लाह ने तय नहीं किया, मुकर्रर नहीं किया कि मैं मोमिनात के सवाब को तय करूं, लेकिन एक मोमिना है जो नमाज शब के लिए उठना चाहती है तो ऐसे सेटअप बना दिया जाता है कि अगर वो खटका भी करती है तो शोहर उठ के धाड़ता है। फिर दौरा पड़ गया तुम्हें लंबी लंबी नमाजें पढ़ने का, ना रात को सोती हो ना सोने देती हो, सारे घर का आराम धर्म भरम किया हुआ है, बंद करो ये शोर शराबा, लाइटें बंद करो, ये क्या पानी की आवाज है। वो बेचारी सहम जाती है, फिर सोचिए पढ़ूं ना पढ़ूं, पढ़ूं ना पढ़ूं, मुझे नहीं पता ये पढ़ पाती है कि नहीं पढ़ पाती। अफजलुल आमाल अखलासुहा, मौला ने फॉर्मूला दिया, कुछ टेबल्स याद कर लेना मैथ्स में तो आपका मैथ्स थ्रू आउट अच्छा हो जाता है, दो का पहाड़ा तो छह का पहाड़ा तो नौ का पहाड़ा, कुछ टेबल दीन के अंदर भी हैं, वो आपने याद कर लिए थ्रू आउट आपका दीन आसान हो गया, अमल की जहमत बढ़ती जाएगी, उसका अजर भी बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे आपने मुशक्कत सही, वैसे वैसे अल्लाह मियां ने शायद शायद, मैंने कहा ना मैं कोई अल्लाह की नुमाइंदा नहीं हूं कि मैं कहूं इस मोमिना, मुमकिन है ये मोमिना नमाज शब ना पढ़ पाए लेकिन उस मोमिना से ज्यादा सवाब हासिल कर ले जिसका पूरा सेटअप ही ऐसा है, जिसका पूरा सेटअप ऐसा है। जैसे मैं एक दफा रहबर की तकरीर सुन रही थी ईरानी चैनल्स पे, उनके कभी ऐसे इंटरव्यूज आते, बताने लगे कि हम छह भाई थे, शायद पांच या छह भाई हैं मकामे मौज़े में रहने, बताने कि हम छोटे छोटे से थे तो अम्मा हमारी मामे बनाकर पहनाया करती थी, इसलिए कि मेरे नाना मुझ शहीद थे, मेरे दो मामू मुझ शहीद थे, मेरे अब्बा मुझ शहीद थे। और फिर वो अपने बचपन की वाक सुना रहे थे, मैंने कहा कैसे लोगों का ऐसा बचपन होता है, कहा छोटा सा घर था 65 मीटर का मस्जिद में, क्योंकि खुरासानी है मस्जिद मुकद्दस के रहने वाले, कहा दुआ अरफा वाले दिन अम्मा हमारे में सेन में लेके बैठ जाती थी, अब छह बच्चे पीछे बैठे हैं, आगे अम्मा बैठी है, जेरे आसमान पढ़ना रिवायतों में आया है ताकि दुआ मुबारक अरफा की, कहा अम्मा कहती थी जो आखिर तक बैठेगा उसे इनाम दूंगी, कभी जलेबियां दिला दी, कभी कोई और चीज दिला दी, जो बच्चों को दिलाया जाता है। कहा हम भाई क्या करते थे, तीन पीछे बैठे रहते थे, तीन जाते थे खेल कूद कर, एक घंटा डेढ़ घंटा दुआ अरफा भी लंबी दुआओं में से है, फिर आकर रिप्लेसमेंट में बैठते थे, वो दूसरा ग्रुप चला जाता था, अम्मा जब दुआ अरफा खत्म करती थी तो हमारी कोऑर्डिनेशन इतनी स्ट्रांग थी, छह के छह पीछे लाइन में बैठे हुए मजबूत शक्ल बनाकर। अब आप सोचिए, यानी हकीकतन ऐसी माएं बहुत सो में, हमें से बहुत सो को नहीं मिली ऐसा माहौल, बहुत सो को हमने जवानी में शायद 13-14 साल की उम्र में दुआ अरफा का नाम भी नहीं सुना था कि अरफा की दुआ भी कोई बला होती है। अरफा करीम और दुआ अरफा में कोई फर्क है, ये दो अलग अलग चीजें हैं, तो ये सिचुएशन है। लेकिन बहरहाल देखें, पिछली जनरेशन को तो आप वैसे ही थोड़ा मार्जिन देते ना, मैं अपनी माओ से, अपनी बहनों से, अपनी सारे सीनियर सिटीजन से माजत करते हुए, बूढ़े को सिखाया पानी पर लिखा, वो उनको तो आप एक हद तक थोड़ा बहुत अपने साथ चला सकते हैं, उससे ज्यादा आप एक्सपेक्ट भी ना करें। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हैं कि मैं 70 साल की उम्र में 50 साल मैंने जिंदगी के साड़ी और ब्लाउज में गुजार दिए, दुपट्टे से बेनियाज होकर जिंदगी गुजार दिया, आपके कहने पर मैं निकाब दस्ताने बड़ी सी बुरका, नहीं ऐसा नहीं होगा ना। मुझे सिखाने के लिए आपको नए सिरे से बुढ़े तोते को पढ़ाना तो वैसे ही आसान काम नहीं है ना, इसके बरक्स हमारा ज्यादा डिवोशन, ज्यादा तवज्जो यंगस्टर्स पर, स्पेशली जवानों पर, जवान को सिखाया पत्थर पे हक किया, तो अब हम तय करेंगे हमें किस पर ज्यादा मेहनत करनी है और कैसे करनी है। यहाँ पर एक फॉर्मूला है, पता नहीं किस जगह से उठाया था, बड़ी मुद्दतों पहले कुछ चीजें डायरियों में लिख ली थी जो बुढ़ापे में काम आ रही हैं, फटाफट काम हो जाता है। जमाने कदीम से इंसान को किसी भी काम की तरफ माइल करने के लिए, अच्छा सिर्फ इंसान को नहीं, अगला जुमला है तो बड़ा ही नामुनासिब, और आप में से अक्सरियत सादात कराम की है तो मुझे ये जुमला बोलते हुए भी डर लगता है, लेकिन जानदारों की, अब आप समझ गए ना इंसान के साथ प्लस क्या होगा, बोले बोले जानवर है। कितनी उदास उदास ही शक्ल बना के बैठे हैं, सर अलीम ने डांटा डबते आप लोगों को। उनका तो मिजाज ही नहीं ऐसा, क्यों किसी को डांट, भूख लग रही मुझे पता है, कोई बात नहीं घर जाके खा लीजिएगा अगर कोई बोटियां चार बज गई भी। अलमिया तो ये है कि अगर आप दोपहर में बिरयानी बना कर आई होंगी तो बाकी आपके लिए सिर्फ आलू और चावल ही बचोगे, मम्मी बाजी भाभी बहन बेटी यही बचा है, वो सारा कुछ कहाँ गया जो उस वक्त डाला था हमने गोश्त के नाम पर, वो तो पहले आई है पहले पाई होता है ना, या फिर ऐसी बोटियां जिन्हें कोई मुंह नहीं लगाता वो भी बच गई होंगी, फिक्र ना करें कुछ ना कुछ मिल जाएगा। हुदहुद ने जनाब सुलेमान बिन दाऊद की दावत की थी लश्कर के साथ, सुलेमान बिन दाऊद लश्कर के साथ पहुंचे, जब लश्कर के साथ पहुंचे समंदर के किनारे, हुदहुद ने एक टिड्डा पकड़ा और उसको शिकार करके समंदर में फेंक दिया। सुलेमान बिन दाऊद ने कहा क्या करूं, कहा या नबी अल्लाह बिस्मिल्लाह कीजिए, कहा क्या, कहा ये समंदर आपके सामने है, जिसे बोटी ना मिली से शोरबा जरूर मिल जाएगा, लश्कर से कहे बिस्मिल्लाह करें तो मुमकिन है बॉसों को बोटी ना मिले शोरबा घर जाने तक मिल जाएगा, इतनी भूख का एहसास इंसान के साथ जानवर को भी। सुधाने के। अच्छा इसमें एक तरीका सिर्फ इंसानों के लिए है और दो तरीके मुश्तरक है इंसान और हैवान के दरमियान। मैं आगे इस तसनात को आपकी खिदमत में बयान करती हूँ। मजे की बात है इन तीन तरीकों में से एक तरीका शैतान ने भी आजमाया था हजरत आदम पर, मेरे और आपके अब्बा पर, और बड़े प्यार से हजरत आदम को बाहर निकाल के जन्नत से खड़ा कर दिया। पहला तरीका है तहदीद। यहाँ व्हाइट बोर्ड नहीं है वरना मैं लिख के दिखाती। दो चश्मी है के साथ, खुदा गवाह से हलवे वाली है के साथ ना लिखेगा, तहदीद लिख ले। मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ, उर्दू में इनके अच्छे वाले नाम बताती हूँ। तहदीद, दूसरा तत्मी, ते तमाशे, तमा समझते ना, ग्रीडीनेस लालच, तत्मी तमा दिलाना। तमा के आगे एक ते लगा दें, बीच में एक ये बढ़ा दें, तमा के आगे एक ते लगा दें, तत्मी तमा दिलाना। ऐसी तहदीद बरवजन तफ़ील, जवानी में हम ऐसे याद किया करते थे। तत्मी मैं दोनों के मैं एक्सप्लेन भी करती हूँ माना को। और तीसरा तबलीग, ये तो लिख सकती है ना, इसमें तो ना गैन की बहस है ना जीम की बहस है। तबलीग, तहदीद डराना धमकाना, इसके अंदर बहुत कुछ आ जाता है। मारपीट करना, कमरे में बंद कर दूंगी, मुर्गा बना दूंगी, कमर पे ईंटें रख दूंगी, ऐसी तहदीद। और बाज लोग तो आंखों ही आंखों में तहदीद करते हैं। आपने बाज माओं को देखा होगा, हमारी अम्मियाँ करती थी, यानी हमारी अम्मियाँ सिर्फ देखती थी वहीं पर दम निकल जाता। बहुत कभी मैंने यानी सिर्फ मेरी जाती तजुर्बा नहीं, बाज वक्त अपने ग्रुप के लोगों के साथ बैठे तो बहुत बड़ा जुमला जो कहती ना, आ लें तुम्हारे अब्बा, वहीं बस इट्टी गुम होती थी। अब्बा के आने से पहले सो जाए, नानी के घर चले जाए, दादी के आगोश में पनाह ले ले, एक धमकी होती थी अब्बा आ ले। अब्बा बेचारों ने मारा हंटर से नहीं, बाज यानी हम बाज दोस्तों से पूछे कि अब्बा ने कभी मारा, नहीं याद ही नहीं पड़ता अब्बा ने कभी ऐसा, कभी शायद एक आधी बचपन में लगा दियो, वरना मारना जिसको कहते ना पकड़ के हंटर से मारे, बेल्ट से मारे, पाइप से मारे, नहीं मारा। बस वो अब्बा का नाम ही काफी है, वो डालडा वालों का नाम ही काफी है, अब्बा का भी सिर्फ नाम ही काफी है। तहरीर डराना धमकाना। आपने कभी सर्कस के अंदर चीतों को आग के सर्कल से निकलते हुए देखा है? किस चीज के बलबोते पर एक इंसान एक दरिंदे को मजबूर कर देता है कि वो आग के हल्के से गुजर जाए? तहदीद। इस शख्स के हाथ में कोड़ा होता है जो नॉर्मली सर्कस देखने वालों को नजर नहीं आता, लेकिन ऐसे एंगल पर रखा जाता है कि उस चीते को नजर आता है। तहदीद देखा आपने, वो उसमें से वो क्रॉस कर जाते हैं, डराना धमकाना। सबर करें, आप घर चले, ऐसे झूठे कहे जाते हैं बाजुकात। आपने देखा है बाजुकात बच्चे कहीं जाके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और फिर माए उनको आंखों ही आंखों में कानों में, बाज माएं चुटकियां भरती हैं, बाज बाल लोचती हैं, बाज पैर पे पैर मारती हैं। बच्चे आजकल कहते हैं सियाने, पिछले दिनों मैंने हमने किसी बच्चे के पैर पे पैर मारा तो कह रहे पैर पे क्यों पैर मारी, मुंह से बोले। मैंने कहा जलाल खाली का मुंह से ही बोलना पड़ेगा, तुम घर चलो जरा मैं बताती हूँ तुम्हें क्या हाल होने वाला है। इंसान किसी काम के हवाले करने के हवाले से या ना करने के हवाले से सामने वाले को ऐसे डराए धमकाए, किसी ऐसी सजा का खौफ दिया जाए। अच्छा ये आप सोच रहे हैं, मैंने तो जानवरों की एक मिसाल दी, इंसानों की भी मिसाल के तौर पर एक स्कूल में जाने वाला बच्चा होमवर्क नहीं करके आता, इसे किस चीज का खौफ है? क्लास से बाहर जाकर खड़े हो, अब तो मारने पीटने वाला जमाना नहीं रहा ना, अब तो डर लगता है टीचर्स को भी, वो बच्चे आ जाते हैं और तो और आसमा जंगी टाइप की आंटियां पहुंच जाती हैं, किसने इस बच्चे को मारा, और मीडिया वाले पहुंच जाते हैं कमर के हर एंगल से दिखाते हैं कि बच्चे के ऊपर तशद्दुद किया और टीचर को सस्पेंड कर दिया जाए। लेकिन बच्चे को डराया जाता है स्कूल में, मतलब हम मासियों को डराते हैं तुम्हारी तनख्वाह काट लेंगे, और हम शोहरों को डराते हैं कि शाम को घर में खाना नहीं बनाऊंगे अगर आप इसी तरह से चलते रहे, इसी तरह मेरी बुराइयां दोस्तों में बैठ के करते रहे। खुलासा, डराना धमकाना, इस तरीके से इंसान को भी राम किया जाता है, इस तरीके से जानवर को भी राम किया जाता है। और जानवरों के अंदर भी बदतरीन दरिंदों को, आपने सुनामी से पहले थाईलैंड में हाथियों का एक प्रोग्राम होने वाला था, मजे की बात है सुनामी में हजारों इंसानों की लाशें मिली, हाथियों का एक भी लाशा नहीं मिला, क्योंकि लास्ट मोमेंट से सुनामी से पहले सारे हाथी रस्सियां तोड़ाकर भाग गए। हाथियों को एहसास हो गया कि तूफान आने वाला है, वो इंसान जो इतना इंटेलेक्चुअल बना फिरता है, मरीख पर पहुंच गया है, चांद की खबरें सुनाता है, मिट्टी दिखाता है, उस इंसान के नाक के नीचे क्या क्या कुछ हो गया, और कुदरत ने दिखा दिया कि मैं ऊपर बैठा हूं। ये हाथी, ये घोड़े, ये गधे, ये चीते, ये पता नहीं क्या क्या जो भी सर्कस के जानवर होते हैं, ये सब काम करते हैं इस एक बलबोते पर। दूसरा तरीका तत्मीन, तमा दिलाना। मदरसे में इंसान बन के बैठे रहना, वापसी में मैं तुम्हें चॉकलेट्स लेकर दूंगा। मदरसे में तो हम ऐसे नहीं कहते, मदरसे में बच्चों का कमरा अलग है हमारा अलग है, नॉर्मली हम माँ ये काम मजलिस में अपनाती है। मजलिस में आपने देखा होगा बाज माए तो खैर वो तकमी का सामान साथ लेकर आती है, इतना बड़ा थैला है। आप यकीन करें मैं पिछले यानी मेरी 3.5 साल की बच्ची है, बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं कोई चीज लेकर ना जाऊं मजलिस में, लेकिन नतीजा क्या निकलता है? मैं नहीं लेकर गई इसलिए कि मैं ये हैबिट नहीं देना चाहती, नहीं चाहती कि वो मजलिस को पिकनिक स्पॉट समझ के खाता रहे। मेरी बच्ची सबको देखती है, मैं उसको अपने तरीके से हैंडल कर लेती हूँ, फिर आंटियां आगे बढ़ती हैं, बेटा ये ले लो। वो जब वापस आती है ना तो मैं जितनी 50 रुपए की थैली नहीं दिला सकती ना, वो 70 रुपए की थैली लेकर मस्जिद में से एक राउंड लगा कर आती है। उसके हाथ में एक थैला होता है, उसके अंदर बहुत सारी चीज होती है। मोहब्बत करने वाली मोमिनात है, मुझे मैं उनकी मोहब्बत को डिनाई नहीं कर सकती, लेकिन ये अलमिया है बच्चा मजलिस में जा ही क्यों रहा है। बच्चों को मजलिसें अच्छी नहीं लगती, आपको पता है क्यों अच्छी नहीं लगती? आपने कभी सोचा? आप मुझे नाम नहीं आते, बहुत माजरत आप जिन्होंने सर इधर किया, क्यों अच्छी नहीं लगती? यंग गाइस को तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मैंने महसूस किया। नॉर्मली मजलिसों में शौक से नहीं जाते बच्चे, बाउंड होकर बैठना पड़ता है। ये बाउंड होकर बैठते हैं, आप इनको लैपटॉप पे कोई गेम नहीं निकालते हैं, कार रेसिंग की, ऐसे बाउंड होकर 2.5 घंटे बैठेंगे, आवाजें दे देंगे, हलक में कांटे चुभ जाएंगे, बेटा आओ नहा लो पानी चला जाएगा, अम्मी मैं बगैर नहाए मजीद 5 दिन गुजार लूंगा, लेकिन अभी यहाँ पे मैं बाउंड होकर बैठा रहूंगा। बच्चों को मजे से आपने सोचा कभी क्यों नहीं अच्छी लगती? हमारे बच्चे तो जले दिल के फफोले फोड़ चुके हैं। पहली वजह मजे से बहुत लंबी होती है, दूसरी वजह मजे से बोलने वाले की जुबान उनको समझ में नहीं आती थी। दफ़े ज़रर मुहतमल के लिए इस्लाम ने ये कवानी नहीं चला के, अब आप सोचें, आप माशाल्लाह समझदार सीनियर ग्रुप है, दफ़े ज़रर मुहतमल में फंस जाएंगे। वो तो बच्चा है 12-13 साल का जो घर में हिंदी नुमा उर्दू बोल रहा है, इसलिए कि उसे मीडिया जो सिखा रहा है उसकी माँ ने तो उसे सही तरह से अपनी जुबान नहीं सिखाई। हालांकि आगा सिस्तानी ने बहुत अच्छी बात कही, कुछ मोमिनीन का एक गिरोह उनके पास गया, उन्होंने कहा हमें अपने बच्चों के लिए मुआवजा करें, कहा आप अपने बच्चों को अपनी मदर लैंग्वेज सिखाएं, मसलन कोई सराइकी है, कोई खोजा है, कोई पंजाबी है, कोई सिंधी है, अपनी जुबान, अपनी जुबान पूरा कल्चर होती है। दुख की बात यह कि मसलन मैं भी अपने बच्चों को सही तरह से पंजाबी नहीं सिखा पाई, कि अगर मेरे किसी बच्चे से कोई पंजाबी में 20 जुमले लिख दे तो वो तो सोचने पड़ जाएगा अम्मी क्या लिखूं। इवन शेर पढ़ती हूँ ना कभी कोई पंजाबी है ना, मेरी शक्ल देखते रहते हैं, नदीन सरवर के पंजाबी के नौ की मुझे उनको डबिंग करके सुनानी पड़ती है। लेकिन हम अपनी औलाद को कल्चर नहीं दे पाए, अपनी मदर लैंग्वेज। आपने देखा होगा लोगों के अंदर एक हेजिटेशन का एहसास होता है, स्पेशली जो उर्दू जुबान नहीं है, वो उर्दू बोलते हैं तो साफ पता, जैसे मैं बोलूंगी साफ आपको पता चल जाएगा पंजाबी, लेकिन मैं इसमें हेजिटेशन क्यों फील करूं? इट्स माय ऑनर, ये मेरे लिए एजाज की बात है, मेरे पास अपनी एक मदर लैंग्वेज है, तासुब से हटकर, सारी बहस से हटकर। लेकिन बहरहाल हम बच्चों को मजलिसों में लेकर जाते हैं तमा के बलबोते पर, बच्चे मजलिसों में, मैंने पिछले दिनों किसी के दावत में बच्चे देखे, आओ ये खुद आया, मैं घर आकर तस्बीह पढ़ दी रही उन बच्चों की, बाद में उनकी अम्मी ने बताया कि उन्होंने को बहुत हैंडसम किस्म का लालच रखा था कि जहरा आंटी आएंगी उनके साथ, उनके शौहर और बच्चों में इंसान बन के बैठे रहना। मैंने कहा आपके बच्चे इतने कूड़, मैं तो घर जाके भी हैरान रहती हूँ, इस उम्र के बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं? पता चला कि इस सारे की तय के अंदर एक लालच था, मसलन सन बाद ले जाऊंगी, मसलन पिज्जा हट से पिज्जा मंगवा दूंगी, मसलन ये कर दूंगी, मसलन वो कर दूंगी, तमा दिलाना। हजरत आदम को भी शैतान ने किसी चीज की तमा दिलाई थी, रिवायतों का इख्तराफ है, मैं मेंशन नहीं करना चाहती। इसी तमा में हम मछलियां पकड़ते हैं, मछली आपके कांटे पर, कांटे तक किस चीज के बलबोते चलकर आती है बताइए? छोटा सा मकोड़ा लगा होता है या छोटी सी, वो छोटे साइज की मछली पकड़ी जाती है, छोटी मछली डाली जाती है बड़ी मछली को पकड़ने के लिए, वो मछली की तमा उसे कांटे तक पहुंचा देती है, दाने की तमा परिंदे को सयाद के जाल में फंसा देती है, और बाज़ुकात बेहतर से बेहतर की तमन्ना बेहतरीन रिश्तों को ठुकराने का सबब बन जाती है। गलत कह रही हूँ? ये हकीकत है, ये हमारे माशरे की तल बिटर फैक्ट्स हैं, ये तल हकीकतें हैं, हमें इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन तत्मी मिसाल के तौर पर, तत्मी के लिए मैंने एक मिसाल भी यहाँ पर लिख कर रखी हुई है कि हमारे सोजा बाजार में कुछ क्लासेस होती हैं माह मुबारक रमजान की, स्पेशल क्लासेस, इन्हें राउंड टेबल क्लासेस कहा जाता है। आपके भी मदरसे में शायद आगा दाऊदानी वगैरह आए हों, ये सारे उन क्लासेस की यानी से बिलोंग करते हैं, इन लोगों ने शायद स्टार्ट उन क्लासेस से लिया। ये क्लासेस का एक अजीब सा असर होता है, मैंने पिछले साल इफ्तार के बाद होती है ये क्लासेस, तकरीबन एक ग्रुप को जो मैं जानती हूँ जिसमें मेरे अपने बच्चे जाते हैं 750 के करीब, पता नहीं 800 के करीब बच्चा होता है, और इस तरह के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स की तरफ से ये क्लासेस होती हैं जिन्हें राउंड टेबल दीनियात क्लास कहा जाता है। पूरा रमजान चलती है, रोजाना 2 घंटे चलती है, मगरिब के बाद चलती है, खुदाया आफत मचा देते हैं बच्चे माओं के लिए। इस क्लास के अंदर एक चार्ट दिया जाता है, इस चार्ट के अंदर बड़ी मजे की चीज होती है, नमाज शब जो 11 रकत पड़ेगा वो एक टिक करेगा, उसके मसलन 10 रुपए डाल दिए जाएंगे, उसके उनका एनवलप दिए जाते हैं बच्चों को आखिर में, उस एनवलप के अंदर बच्चे बाहर निकलते ना तो इतना पुलिस सिरात की फिक्र नहीं होती जितनी उनको अपने एनवलप की फिक्र होती है, वही उनका बस ले ना स्टेज पर मौलाना के सामने देखें हरे हरे नोट कितने गिने जाए, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं। 2 साल पहले मैं खुरासान से अपने घर बाय वॉक जा रही थी, रास्ते में निस्तर भागा थे, बच्चे दौड़ लगाई हुई है, पीछे वाला कहता है आहिस्ता चलो, कहता है मेरी लेट लग जाएगी, मेरा ये हो जाएगा, यानी हलचल का सा समय। इन क्लासेस की वजह से बाज बच्चे बाज इफ्तार डिनर्स में नहीं जाते, क्योंकि फुल अटेंडेंस का एक इनाम होता है, जहां आपकी एक छुट्टी हुई वो आपका फुल अटेंडेंस का इनाम गया, हर चीज के बदले में। पूरा साल आप बच्चों से कहें महीने में एक कुरान खत्म कर लें, कभी नहीं करें, माह मुबारक रमजान में करते हैं, इट्स मीन वी कैन डू इट, इसका मतलब हम कर सकते हैं। शव्वाल की पहली नमाज के बाद या अली या जी बंद, اللهم ادخل الاهل قبور السرور بند، حج بیتک الحرام بند، دعا افتتاح بند، قرآن بند، مفاتی بند، اعمال ماہ مبارک رمضان بند، لیکن یہ سب کام اچھا ان کلاسز کی ایک ایج لمٹ ہے گریڈ 5 سے لے کر انٹر تک۔ انعامات کے اندر ایک عجیب سی سوچ ہے، 50% انعامات ہاؤس ہولڈ ٹائپ کی چیز ہوتی ہیں، گھریلو استعمال کی چیز، جوسر، ڈنر سیٹ، پتہ نہیں سوٹ سیٹ، اس ٹائپ کی چیزیں ساری اس کے اندر ہیں۔ اس یہ آپ کی ماؤں کے لیے موٹیویشن ہے جنہوں نے آپ کو پورا رمضان کلاس میں بھیجا، یعنی بچے پروٹیسٹ کرتے ہیں یہ میں پیالے لے کر کیا کروں گا، تو بولیں گے بیٹا تمہاری ماں نے محنت کی، تمہیں تیار کیا، ڈانٹ ڈپٹ کے گھر سے جوتے مار کر نکالا سکون کا سانس لینے کے لیے۔ 50% ہاؤس ہولڈ ہے ماں کے لیے، 50% جو گفٹس ہیں وہ بھی بچوں کی اختیار سے، ان کو ایک لسٹ دے دی جاتی ہے، آپ کے اتنے نمبر ہوں گے تو آپ کو یہ چیزیں مل سکتی ہیں، اب آپ اس میں سے ٹک کر لیں، اور باقاعدہ وہ ڈسپلے پر لگی ہوتی ہیں چیزیں، وہ اپنی مرضی سے ٹینس بال اور بیڈمنٹن اور اسکواش کے ریکٹس اور الم گلم سب خریدتے رہتے ہیں۔ یہ راؤنڈ ٹیبلز میں نے بہت عجیب سی چیز دیکھی اپنی فیملی کے بعد، ایسے بچے جو سارا سال 11 مہینے آپ ان کے پیر پکڑ لیں وہ نماز عشاء کی 3 رکعت نہ پڑھے، وہ 11 پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں ان کو پتا ہے، اس 11 رکعت کے مثلا 20 روپے ہیں، ہر روز کے 20 روپے ہیں، اور وہ آخر میں جا کر بعض بچوں کی تو 1000 سے اوپر چلی جاتی ہے نا بات، قرآن ختم کرنے کے مثلا روز کے 1 سپارے کے 10 روپے ہیں۔ اچھا اس کو 2 چیزیں ساتھ میں، ایک اسے پیسہ اور چیز مل رہی ہے، اور دوسرے اسے اعزاز کی ایک خوشی ہے، اسے سب میں بلایا جائے گا، بوزانی ہال میں گرینڈ فنکشن ہوگا، 600-700 اماں ابا، امائیں تو نہیں ہوتی، ابا تالیاں پیٹیں گے، سلواتیں پڑھیں گے، پھر اس بچے کو بلا کر ایک انعام دیا جائے گا۔ یہ تما انسان سے کیا نہیں کرواتی، مزے کی بات ہے قرآن کی بھی یہ سنت رہی ہے، بقول ہمارے استاد بزرگوار آقا محسن قراتی کے، یہ ان کے جملے ہیں، ایک دفعہ درس تفسیر میں کہتے ہیں خود خدا نے اس سنت کو استعمال کیا ہے انسان کی طبیعت کے اندر۔ سورہ مبارک قریش، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإلاف قریش، إلافہم آگے فل یعبدو، یہاں پر رک جائیں، فل یعبدو رب ھذا البیت، آپ کو اس گھر کے رب کی عبادت کرنا پڑے گی، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، یہ وہ رب ہے جس نے تمہیں بھوک میں کھانا دیا۔ بقول آقا قراتی کے اس آئے کی تفسیر کے ذیل میں کہتے ہیں بچے کو 2.5 سال کے بچے کو بتایا جاتا ہے باپ اچھا ہے، تمہارے لیے چاکلیٹ دیتا ہے، کینڈیز لاتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے۔ 20 سال کے بچے کو آپ کہتے ہیں باپ اس لیے اچھا ہے کہ چاکلیٹس لاتا ہے، نہیں، وہ سمجھ گئے کہ باپ اچھا ہے، اب وہ سمجھ گئے کہ باپ اچھا ہے، اب اسے چاکلیٹ کینڈیز کچھ بھی نہ، باپ ایک تھپڑ بھی لگائے گا تو بھی اس کے اندر شعور ہوگا، تو یہ جانتا ہے کہ اسے باپ کی ریسپیکٹ کرنی ہے، اور پھر یہ عبادت اور انسانیت کا پہلا درجہ ہے۔ آخر میں جا کے حضرت موسیٰ سے کہتا ہے آخر میں صلاۃ علی ذکری، موسیٰ نماز کو میری یاد کے لیے قائم کر، وہ موسیٰ کی نماز ہے خدا کی یاد کے لیے، یہ قریش کی نماز ہے فل یعبدوا رب ھذا البیت کے لیے، یعنی تما ہے اس کے اندر کھانے کی پینے کی بہت ساری۔ مزے کی بات ہے، اب میں دوپہر ساری لگی رہی ایک روایت کو ڈھونڈنے، روایت میں نے البتہ پڑھی اپنی آنکھوں سے اور سنی بھی ہے بعض اساتذہ سے، آپ دیکھیے گا کہاں پر ہے وہ روایت، چھٹے امام صادق خیال محمد امام جعفر، امام صادق کی روایت، میرے الفاظ میں امام صادق کی روایت کا مفہوم یہ ہے کہ حج کے اخراجات میں سے ایک خرچہ اہل و عیال کے لیے ہدیہ لانا ہے، حج کے البتہ اعتدال کے اندر، یہ نہیں کہ آپ وہاں سے اتنے سونے کے سیٹ خریدنے کے بعد میں آپ کو یہاں ڈیوٹی فری والے پکڑ لیں، ایئرپورٹ والے گھیر لیں، حج کے اخراجات میں سے ایک خرچہ کیا ہے، آپ اپنے اہل و عیال کے لیے گفٹ لے کر آئے، تو ہاتھ دو ہدیے دو، محبت بڑھتی ہے، لین دین اعتدال کے اندر، اسلام اپریشیٹ کرتا ہے اس چیز کو، اسلام لین دین کا آپس میں ایک دوسرے کو دینا لینا ان چیزوں کی۔ مزے کی بات ہے، ابھی ہم جتنی بھی بحث کریں گے نا ہم اس کے اندر جنت کی نعمتوں کی بات نہیں کریں گے، इंसाफ से आप में से तकरीबन मेरा मेरा अच्छा गुमान है, मुझे यकीन है आप मोमिना रात को सूरह वाकया पढ़ती होंगे। सूरह वाकया हम क्यों पढ़ते हैं? एक्सीलेंट एक्सीलेंट। सूरह वाकया हम पढ़ते हैं इसलिए कि बचपन से हमने वो हदीस अब्दुल्लाह इब्ने मसूद बहुत बीमार पड़ गए, बिस्तर मर्ग पे पहुंच गए, उस्मान बिन अफान पहुंचे, देखा उस अब्दुल्लाह इब्ने मसूद मर रहे हैं, कहा अब्दुल्लाह इब्ने मसूद तबीब को बुलाऊं, कहा इसकी हाजत नहीं, कहा फिर मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, कहा जब कर सकते थे उस वक्त तो किया नहीं, अब तो मैं मर रहा हूं। अच्छा अब्दुल्लाह इब्ने मसूद की इस रिवायत की रूह से औलादे नरीना नहीं थी, उन्होंने कहा तुम्हारी बेटियों के लिए कुछ कर जाऊं कि चलता रहे उनका सिलसिला, कहा मेरी बेटियां तुम्हारी मोहताज नहीं है, कहा क्यों, कहा मैंने उन्हें सूरह वाकया पढ़ने की आदत दे दी है। हम सूरह वाकया पता क्यों पढ़ते हैं? इससे पहले एक सफा है जो बताता है फकर फाके से बचाएगा, ये करेगा ये करेगा ये करेगा, हम उस सफे को पढ़ते हैं और फिर हमारे पीछे कोई लग जाता है, इधर वाकया इधर वाकया, ओ बस पढ़ लो सूरह वाकया। थोड़ी देर के लिए आप सोचे हैं आपकी मुफाती आपकी वजायफ लबरार का वो फजीलत वाला सफा ड्रॉप हो गया, पढ़ने में दिल नहीं लगेगा। ये जन्नत की तमा है जो हमसे इबादतें करवा लेती है, यानी मैं बहरहाल मेरा मेरा फोकस इस चीज पर नहीं रहेगा, कभी कभी दिल चाह रहा है पुरानी कुछ आवाजें आ रही हैं मुना मानूस, अब मैं आवाजों को एक्सप्लेन नहीं करना चाहती, समझने वाले सब समझ गए। अरबी का एक मुहावरा अलखिनाय तो अब लोगों में नतरी, बात बातें छुपी हुई रहें तो ज्यादा बेहतर है खुल्लम खुल्ला बयान करने की जरूरत। एक लम्हे के लिए रुक गए, नलका बंद कर दो, क्यों, कुछ आवाज आ रही है पड़ोस में, कुछ चल रहा है ड्रामा फोन पर चल रहा है, सीडी प्लेयर पर चल रहा है, वो जवानी की यादें और बाहर याद आ रही हैं, सुना करते थे बैठ कर सर धुना करते थे, एकदम याद आया मोहतरमा फुला जाकिरा मोहतरम फुला मौलाना ने पढ़ा था, शीशा पिघला कर डाला जाएगा, नलका तो नलका, साथ अड़ोस पड़ोस की आवाजें भी खोल दो, नहीं सुनना चाहते, किस चीज ने रोका, वो शीशे के पिघलाए हुए डाले जाने की तरह नहीं भाई तामुल नहीं है। हम तो वही बात ना मौला वाली बात कि कुछ लोग गुलामों की इबादत तो गुलामों की सी इबादत करते हैं, कुछ ताजिरों की सी करते हैं, मैं अल्लाह को अल्लाह समझ से इबादत करता हूँ, मौला वो आप ही थे। हम ये जितने भी पर्दा करते हैं किस चक्कर में करते हैं, वो अलकायम की वो जो हैं बस किताबें, औरत को देखा सर के बालों के बल जहन्नुम में लटकी हुई है इसलिए कि नामहरम से बाल नहीं छुपाती थी, फौरन हाथ यूं जाते हैं, मखना तो मखना कैप को भी मेंटेन रखते हैं मखने के नीचे बाल ना निकलने पाए, इसलिए कि इस बाल से लटका दिया जाए तो क्या हाल होगा, वहां बाल टूटेगा भी नहीं, फरिश्ते हो सकते कोई ऐसा एंटी हेयर फॉल फॉर्मूला इस्तेमाल करें, वरना दुनिया में तो बाल ऐसे हो गए अक्सर मोमिनात के, यहाँ लटकाए तो डराम से बाल सारे के सारे जड़ से खत्म, ऐसा हाल होगा, लेकिन वो यकीनी सी बात है कोई ऐसा एंटी हेयर फॉल फार्मूला होगा, बालों के बल लटके हुए हैं पता नहीं कितने साल लटके रहेंगे, लेकिन बहरहाल तत्मी चमा है, इबादत करते हैं तो जन्नत की इबादत करते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने महसूस किया है खवातीन का चाहे तौजीह मसाइल में इंटरेस्ट हो ना, आपने भी ये चीज महसूस की, तौजीह में इंटरेस्ट है, नहजुल बलागा बड़ी बोर है, पता नहीं मैंने 10 दफा कोशिश की फिर बस मजा नहीं आया, तफसीर कुरान पढ़े नहीं, इन्हें नवाए सालहीन तस्कीन रूह टाइप की किताबें बड़ी अच्छी लगती है, पता है क्यों, उसमें वजीफे वजीफे होते हैं, जिस दिन लेकर बैठती है बच्चों को लगा देती है बासी सालन फ्रीजर के, खाओ मैं ये पढ़ रही हूँ मैं वो पढ़ रही हूँ मैं वो कर रही हूँ, किसी ने किसी को कान में बताया चेहरा नूरानी करना है तो ये पढ़ो, अब वो रात में अम्मा बुला रही है कानों के अंदर हैंड फ्रीज लगाई हुई और पढ़ पढ़ के फूके मार रही है मेरा चेहरा नूरानी हो जाए, यानी आप सोचिए हम कितना काम ऐसे है जो तमा के ला, आप मदरसे क्यों इस वक्त बैठी हुई, बोलिए जन्नत का रास्ता है, इल्म जन्नत का रास्ता है, वो जो एंट्रेंस पे लिखी है मछलियां भी हमारे लिए दुआ कर रही हैं और हम सोच रहे हैं चलो इसी बहाने हम ब्लेसिंग को हासिल कर लें, वरना शायद आम रूटीन में अगर मैं किसी गेट टुगेदर को भी 2 से 5 अरेंज कर लूंगा तो औरतें के दिमाग ठीक है कौन आएगा, संडे वाला दिन है दोपहर के खाने का टाइम है, आधों को खिलाना है आधों को पिलाना है आधों को ये करना है, नहीं आप सब छोड़कर यहाँ आए हैं, लिल्लाह बहुत रेयर होता है, वही बात जन्नत का लालच है, जन्नत का लालच है और बहुत सारी चीजें हैं, अब एहसास हो रहा है पिछली जिंदगी कितनी जहालत में गुजार दी अब इंसान बन जाए, ये सब चीजें थोड़ी देर के लिए निकाल दें कोई भी मदरसे नहीं आएगा। हमारे एक उस्ताद नकल क्या करते थे, एक हिकायत कहा करते थे, हज़रत मूसा ने खुदा से कहा परवरदिगारा तूने ममता को खल क्यों किया, इस जज्बे को इंसान जज्बात से गुंदा हुआ है ना, परवरदिगार ने हज़रत मूसा की आंखों के सामने से हिजाब हाथ उठाए, देखा एक सेहरा में एक औरत है जो एक बहुत बल्कि बॉडी वाले मोटे ताजे पले पलाए बच्चे को गोद में उठाकर चल रही है और रेत पैरों को तकलीफ दे रही है, कहा मूसा यहाँ ममता है, और जब हिजाब दूसरी दफा हटाए तो देखा कि माँ की दिल से ममता का मुकल्लिबुल कुलूब तो वो है, वो दिलों को फेरने वाले ना, उसने दिल से इस औलाद की मोहब्बत निकाल दी, कभी कभी निकाल देता है, कभी कभी हम इस मुआशरे में देखते हैं यानी एक चीज जो मैंने बहुत ज्यादा मुआशरे में ऑब्जर्व की है, बेटे की मोहब्बत जितनी भी होती है ना, वो शादी से पहले होती है अम्मा के दिल, शादी के बाद नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? लड़के की या माँ की? अच्छा चले, लड़के की तकसीम हो गई। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपकी बात सर आंखों पर अजीजम आपने कह दिया, बात खत्म। लड़के की मोहब्बत तकसीम हो गई, अब वो मसल 80% बेगम की तरफ रुझान है, 20% बेटा तकसीम हुआ है, माँ को क्या हुआ है? एक मिनट इनको बोलने दे, इनको बोलने दे। देखिए ये हकीकत है, मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ, बेटे की तवज्जो हो गई। मजे की बात है, ये चीज हमेशा बेटे और बहू और सास में नहीं होती। हजरत सारा ने बड़े शौक से शादी करवाई थी हजरत इब्राहिम की, ज़ौजियत में दिया था हजरत हाजरा को। हजरत इस्माइल और हजरत इब्राहिम आते थे, हजरत इस्माइल की तरफ लपकते थे, बर्दाश्त नहीं हुआ हजरत सारा से, और बिलाखरे कहा कि वाली ने वहां छोड़ा है जहां कोई गया भी ना। बताइए, अमरे रबी भी था हजरत इब्राहिम, नाउजुबिल्ला नाउज़ुबिल्ला हमारे अल्फाज के मुताबिक तो हम अंबियाए खुदा को भी कह दें जन मुरीद हैं और ये और वो है, नाउज़ुबिल्ला खुदा का हुक्म था। लेकिन ये फितरत है। फर्ज किया आपकी बात 16 आने परफेक्ट है, आपने कहा बेटे की तवज्जो तकसीम हो गई, माँ की मोहब्बत को क्या हुआ? चलें छोड़े, अब आप ये मसला खुद ही हल करें, मैं भी आपका मसला हल करूं। आप खुद ही बैठ कर कभी सोचे माँ की मोहब्बत कहाँ गई? देखा, माँ की ममता दिल से हट गई। बच्चे को रेत पर पटखा और कहा अल्लाह मियां मुझे किसने कहा है पागल बनूं, अपने से ज्यादा वजन उठाकर चलूं। कायनात को चलाने के कुछ निजाम हैं। हमारे बरादर बुजुर्गवार ने एक दफा मजलिस में एक मिसाल मौलाना ज़ैगम अब्बास रिज़वी साहब ने खुम में दी थी, कहा कि इंसान मुमकिन है नमाज के अलार्म पर ना उठे और किसी वाजिब जिम्मेदारी के लिए ना उठे, बच्चा किस मिसाल है माँ उठ के बैठ जाती है, मैं मत जाऊँ पता नहीं क्या हो गया, फिर से कान में दर्द शुरू हो गया। यानी ये चीज ना होती, और जहां पर नहीं है वहां मुआशरा तबाह है, जहां ट्रैश कंटेनर्स में लोग बच्चे फेंक देते हैं, जहां बच्चे नाउज़ुबिल्ला रेल की पटरियों पर लोग डाल जाते हैं, जहां ये करते हैं जहां वो करते हैं, जहां नहीं है वहां मुआशरा तबाह है। कायनात को चलाने के लिए इंसान के अंदर खौफ का मादा रखा गया है, कायनात को चलाने के लिए इंसान के अंदर तमाह का मादा रखा गया है। इंसान को तमाह है, इंसान औलाद क्यों मांगते हैं? मैं ना रहूं मेरा नाम रहे, क्यों मांगते इंसान औलाद? मैं ना रहूं मेरा नाम रहे। और छठे इमाम ने अबू शाकिर देसानी के साथ एक मुफस्सल रिवायत में, जिस रिवायत को मख़ज़े मुतफक्किर जहान तशय्यो सुपरमैन इन इस्लाम नामी किताब में नकल किया है, उसमें इमाम सादिक ने कहा है मौत खुदा के अल्ताफ में से एक लुत्फ है। उसके अंदर फिर इमाम सादिक यहां तक पहुंचते हैं, अबू शाकिर से कहते हैं अबू शाकिर तुमने देखा इंसान औलाद को क्यों पालता है? लोगों ने अपने घरों के ऊपर नाम लिखवाए होते, अब तो नहीं लिखवाते, अब फ्लैटों हैं, हम तो बेचारे रहते हैं अपार्टमेंट सिस्टम में, मैं खुद तो खैर अपार्टमेंट में नहीं रहती, लेकिन उसमें कहाँ तख्ती लगवाएंगे। लेकिन लोग घरों पे नाम लिखवाते, बीवी से मोहब्बत है तो मसलन गुले इश्तियाक लग दिया, गुले फरहत रख लिया, फलाना रख दिया, ढिंगाना रख दिया, शोहर जरा हावी है तो शोहर के नाम पर बाग है फलाना रख दिया, बहिश्ते दहरा रख दिया, इस तरह के नाम। इंसान अपने नाम को जिंदा रखना चाहता है, इंसान के अंदर ये तमा है। अगर ये तमा ना होती तो इंसान अपनी औलाद पे अपनी जान से ज्यादा पैसा खर्च करता, फिर कायनात का निजाम दरहम बरहम हो गया। बस दो तरीके मैंने आपको बताए, इन दो तरीकों में इंसान और हैवान मुश्तरक है। पहला कौन सा था? तहदीद, डराना धमकाना और खौफ दिलाना। दूसरा तथमी। मैं तो आपका इम्तिहान नहीं ले सकती, इसी तरह वर्बल ही पूछ के अपने दिल को तसल्ली दूं कि आपको समझ में आ रहा है। तथमी, तमा दिलाना। मछली को पकड़ने के लिए आप छोटी मछली डालते हैं, परिंदे को पकड़ने के लिए आप जाल के ऊपर दाने फैलाते हैं, और मजे की बात है सर्कस के जानवरों को सुधारने के लिए भी गोश्त का टुकड़ा इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों तरीके ऐसे हैं जिनके अंदर, अब आप ये ना सोचिएगा खुदा ना मैं घर वालों को सर्कस के जानवरों से तशबीह दे रही हूं। हालांकि हमारे माशरे का एक और मजीद अलमिया ये है कि जब हम किसी की तरबियत की तारीफ करना चाहते हैं, पता हम किन बच्चों की तारीफ करते हैं? जो पैट होते हैं, पालतू जानवरों की तरह। मैं आपके घर आई मिसाल के तौर, वैसे मेरा कोई बच्चा भी ऐसा नहीं है बेचारे, मेरे एक बच्चे को बड़ा शिकवा है अम्मा आप ये ना कहा करें मेरे बच्चे, लोग समझते हम इतने खराब है। मसलन अब मैं नहीं, आप में से किसी के बच्चे पर इल्जाम नहीं धर सकती ना, मैं आपके आई अपने चार अदद बच्चों को लेकर, आपने देखा सोफे पे नाचे चले जा रहे हैं, नाचे चले जा रहे हैं, शरबत गिरा रहे हैं, चाय के अंदर बिस्किट डाल रहे हैं, गुदा बना रहे हैं, जैसे ही मैं निकल कर जाऊंगी आप क्या कहेंगे शबाना, आप क्या कहेंगे? तमीज नहीं सिखाई। अच्छा मैं आप उसके बाद इसी मस्खरे पन के दरमियान आप देखें मेरा बच्चा वो इरफानी नमाज पढ़ रहा है, कहेंगे इस नमाज का क्या फायदा, तमीज तो सिखाएंगे जहरा ने, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? हम बच्चों की तारीफ पता कैसे करते हैं? माँ की आंख के इशारों पे चल रहे थे, क्या बच्चे थे, माँ ने इशारा किया शरबत का गिलास ले लो, ले लिया, माँ ने कहा ईडी वाला एनवलप ले लो, ले लिया, माँ ने कहा बैठ गए, बोल रहा था, मजाल है आवाज मेरे कान तक पहुंची, बस माँ के साथ कान में आके मुझे बिरयानी से बोटियां ये वाली नहीं चाहिए वो वाली डाल दे। हम बच्चों की तारीफ नहीं करते उनके पेट होने की, उनके पालतू बच्चा या सर्कस का जानवर है मेरे इशारों पर चले, बताइए मुझे। हम बच्चों के अंदर खुद हक के खुद इरादियत के कायल हैं। नॉर्मली छोटे बच्चों के लिए हम दावत में खाना डाल कर देते हैं, नॉर्मली इससे ज्यादा तौहीन पता है हमारे माशरे में दो तीन चीजों से बच्चों की जाती है। पहली बात तो है कि अगर मैं अपने 8-9 साल की, किसी मेरा 8-9 साल का कोई बच्चा नहीं है, मैं अपने 8-9 साल के बच्चे के साथ आपके आगे, आप मुझसे पूछेंगे जहरा चाय या ठंडा, उससे नहीं पूछेंगे क्यों, आप बता दीजिए क्यों। उसे इस काबिल, असल फुकाह के नजदीक नाबालिग की गिबत जायज है। ऐसे आपने मुंडी कैसे हिला दी सर, कैसे हिला दिया, फुकाह के अंदर इख्तलाफ ही मौजूद है। ऐसे सर हिलाए ना दिल टूट जाएगा मेरा। मुझे आप लोगों की इतनी तारीफ है और इतने आपके लिए अच्छे जुमले इस्तेमाल किए गए आपके ग्रुप के लिए, आप तो ऐसे सर ना हिलाए क्यों, इस काबिल नहीं समझते। अच्छा बाजूकात इससे भी ज्यादा बेदर्दी दिखाते हैं, एक चाय का कप ला के आगे रख देते हैं, होता है बाजूकात हमारे मुआशरे में चीज राइज है। मिसाल के तौर पे 6 साल का बच्चा है, शरबत नहीं शायद हम फिर भी उसे कंट्रीब्यूटर समझ लें कि कंट्रीब्यूट करेगा, एक छोटा कप हमने उसको शरबत का पिला दिया। चाय नॉर्मली, अच्छा बाज घरों में बच्चे भी चाय पीते हैं, बड़ों से ज्यादा शौक से पीते हैं। हमारे घर में भी कुछ ऐसे बच्चे अपने लिए बना रही, मेरे लिए भी बना लीजिएगा, फौरन को चाहिए। रख के राय आपने नहीं दिया मेरे बच्चे को, आप उससे भी पूछनी बेटा तुम चाय पियोगे शरबत या कुछ भी नहीं पियोगे, मुंह से बोल दो। बच्चों की गिबत करते वक्त बहुत बहुत दीनदार माएं भी मैंने देखा वो सोचने की वो गिबत कर रही है, उठाते ही नहीं उठते ही नहीं, ऐसे ढीठ बच्चे हैं। तौबा सुबह आवाजें दे देकर, जब मेरा आखिरी हरबा ये कि मैं इनके बाप को भेजती हूँ तो वो फिर उठ जाते हैं। मसलन ये आपने बच्चे को क्या कहना चाह रही, बच्चा सुस्त है। अक्सर बच्चों की पेटेंट मौजूदात पर गीबतें होती हैं, बच्चे काहिल हैं, बच्चे गैर जिम्मेदार हैं, बच्चे बहुत मैस करने वाले हैं। आगे स्कूल से जो सुनामी के बाद थाईलैंड के साहिलों का हाल हुआ था ना, वो भी लाउंज का हो जाएगा, देखना सोफे के कुशन जमीन पर होंगे, टीवी का रिमोट लेकर पैर ऊपर करके टीवी देख रहा होगा। मसलन आपने साबित किया कि ये बच्चा बहुत मैस है, आपके ख्याल में ये बच्चे का ऐब है या अच्छाई है? इतना छोटा नहीं, बाजूकात हम बड़े बच्चों की तरफ भी ऐसे इशारा करते हैं कि मसलन टाई निकाली फेंक दी, कॉलेज से आया जूते फेंक दिए। यानी अब आप मुझे बताएं, नॉर्मली मदरसे में आने के बाद हम इतने खौफजदा हो गए कि हम सासों की हिम्मत नहीं करते, इंटेलेक्चुअल हो गए, नंदों की नहीं करते, भाभियों की भी नहीं करते, शोहर की भी नहीं करते, बच्चों की करते हैं कि नहीं करते? नहीं, बजाते खुद की बात नहीं होगी, देखें बजाते खुद की तो बात नहीं होगी। एक नॉर्मली मुआशरे में दीनदार लोग, चले आप थोड़ी देर के लिए आपने कहा आप नहीं करती, मुआशरे में होती है बच्चों की गिबत या नहीं होती? फैशन के तौर पे करते हैं कि तुम बड़ी अच्छी हो, तुम्हारे बच्चे क्या सुधाए हुए जानवर हैं, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े। नहीं, मिसाल के तौर पे हमारे कुछ नहीं करते, हमारे कुछ नहीं करते, सिमरात काहिल है। नहीं, एक देखिए, एक मुआशरे की बात, जाती तौर पर किसी की भी दर्स में या मदरसे में मिसाल नहीं दी जा सकती। मुआशरे में नॉर्मली तौर पर बच्चों के बच्चे उधेड़े जाते हैं और माएं शादियों के बाद बैठ के उधेड़ी होती है। शादी में मैं और आप मिले और अब हमारे पास कोई मौजू नहीं, हमने सोचा हम तो मदरसे जाकर गिबत नो एंट्री, तो हम अल्लाह भी घर जाके इन सबकी चीजें मुझे समेटनी पड़ेगी, मजाल है कोई चीज ठिकाने कर दे, हमें तो अम्मा ने बचपन में ऐसा ट्रेन किया हुआ था, बैग उतारे ठिकाने, जूता उतारा ठिकाने, फलानी चीज यू। मतलब हम बच्चे की कुछ पेटेंट मौजूदात हैं जिसमें हम समझते नहीं कि उनकी गीबत या तोहीन। वो यानी फर्ज करें एक नाबालिग बच्चा मर जाए तो उसे कहाँ दफनाया जाता है, सुकैना मुसलमान का नाबालिग बच्चा मर जाए उसे कहाँ दफनाया जाएगा, किसके? मुसलमानों के। उसके ऊपर अच्छा वो पाक है, है? इसका मतलब उसके ऊपर मुसलमान के सारे काम लागू होते हैं, उसकी तौहीन जायज है? उसका दिल अर्शुर रहमान नहीं है, हम सोचते हैं। दूसरी अजीब सी चीज, मजलिसों में उसे छोटी न्याज दी जाती है कि नहीं है? यानी मैं एक दफा बहुत साल पहले मस्जिद मुकद्दस कुछ खमसा मजालिस के लिए गई, एरिया में शहादत थे इमाम हसन के, पैगंबर अकरम के और इमाम रजा के, 28-29 सफर के अयाम थे। नवरोज की छुट्टियों के साथ मुकारन हुए तो बच्चों की भी छुट्टियां थी, सारा सब कुछ बंद था, जिन्होंने बुलाया था ना टिकट वगैरह भी अरेंज कर दी। मैं गई तो पहले दिन मैंने अपने दो बच्चों से, जो छोटे थे, बहुत छोटे थे, बेटों से कहा कि चलो कि मस्जिद में, घर में मुसाफिर खाने में ठीक है, नहीं तो ना से जाओ, मैं जा रही हूँ, टैक्सी आगे भी चले गए। मैं आई तो मैंने इनको बताया कि तुम लोगों को तो पता ही नहीं है यहाँ पर मस्जिद में बड़ा अजीब सा रवाज है, औरतों को तो उन्होंने सैंडविच और ड्रिंक दे दी है, मतलब मुझे एज अ रिसाइटर 4 दे दी हैं 5 दे दी हैं, बच्चों को तो थैले भर भर के कुछ दे रहे थे। क्या दे रहे थे थैलों में? मैंने कहा मतलब चीतोस मैंने देखा और एक छोटी ड्रिंक देखी और एक चॉकलेट थी, उसके अलावा भी कुछ था जो मुझे नजर नहीं आया। बच्चों के हाथों में था, अब अपना बच्चा तो इंसान झांक भी लेता है, आपके बच्चों में थोड़ी मैं झांकूंगी। जितने इन मैनर्डनेस दिखानी होती है ना, वो अपने बच्चों के लिए दिखाते हैं। आप में से किसी का यहाँ मोबाइल पर SMS की टोन बजे, कभी नहीं चेक करूं, बच्चे का पढ़ा तो हम फौरन खोल के देख लेते हैं। क्यों देखते हैं? बेजवाब सो रहे हैं आप लोग, क्यों देखते हैं? नॉर्मली देखा जाता है या नहीं देखा जाता? देखा जाता ना, क्यों देखते हैं? देखे बहुत, ये देखे यहाँ पर 6, 7, 8, 9 सेलफोन्स पड़े हैं। किसी का भी सेलफोन का मैसेज की टोन बज सकती है, स्पेशली अगर किसी का सेट मेरे सेट जैसा होगा, मुझे फौरन अंदाजा होगा मैसेज आ रहा है, मैसेज उसी चेक करना पड़ता, मुझे पता था आज यही बोल। ये बात सही है, बच्चों को आपने उनके लिए हक के खुद इरादी के इस्तेखलाल कायल नहीं। आप मुझे ना कुछ बुलवाएं, मैं कुछ बोल दूंगी, आगा शीशानी का मसला, तो ये बात बहुत आगे तक फैल जाएगी मेरे जुबान से। लेकिन अकॉर्डिंग टू आगा शीशानी, बालिग बच्चों के ईमेल्स, SMS, लेटर्स आप नहीं चेक कर सकते। नहीं, अब वो फिर बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। अच्छा, जायज नहीं है बगैर इजाजत के? नहीं, ये भी नहीं मैं कह रही, मैंने कहा ना ये फिर बहुत बात खिंच जाएगी। लेकिन बहरहाल मैंने वो बच्चों की थैली देखी और मुदाखलत नहीं की इससे ज्यादा, बस अंदाजा हो गया कि ये सब चीजें थी। मैंने घर आकर अपने बच्चों को बताया कि तुम लोग तो गए नहीं, वहां तो ये पट रहा था। कहा बच्चों को बड़ों से अच्छी रियाज? मैंने कहा हाँ, बच्चे अपील करेंगे, इसलिए कि आगे रजा मुख्तारिया ने भी एक मिसाल दी है कि एक मोमिन ने मस्जिद के सेन में एक अंजीर का दरख्त वक्फ किया था। उन नाबालिग बच्चों के लिए सिर्फ अंजीर खाना जायज था जो अपने बाप, दादा, चचा, बड़े भाई के साथ मस्जिद में आते हैं। ये दरख्त वक्फ है किन बच्चों के लिए? जो नाबालिग हैं और किसी दूसरे के साथ मस्जिद में आते, नमाज नहीं पढ़े, नमाज पढ़ रहे हैं नहीं पढ़े, लूली लंगड़ी पढ़े, 4.5-6 साल का बच्चा कैसी ढंग की नमाज पढ़ेगा? ठीक है, अब लेकिन अब वो अगले दिन मेरे से पहले वो दोनों तैयार बैठे। अच्छा, ऐसी चीजें मिलती है तो हम भी जाए पूरी मस्जिद में। मैंने पूरी जिंदगी में इतनी मस्जिद में उनको लेकर गई हूँ, जब वो छोटे थे कभी ऐसे नहीं बैठे हुए जैसे हम मस्जिद में बैठे। हर रोज नुक-सुक से तैयार, साफ सुथरे, मुंह धुला हुआ, चमका हुआ, वहां खड़े, कहाँ जा रहे हो? मैं आपके साथ मस्जिद में जा रहे। तो ये चीज है, ये इंसान की फितरत है। लेकिन हमारे यहाँ हम बच्चों को, आप मुझे बताएं कराची में इतनी कितनी ऐसी कितनी मस्जिद होती है जहाँ बच्चों की नियाज बड़ों से बेहतर हो? आधे शीरमाल मैंने किसी मोमिना से कहा ना, उनको मैंने मिसाल दी, मैंने कहा मैंने मस्कत में किसी मोमिना को ये सजेशन दी, उन्होंने घर में मस्जिद रखी, उनके औलाद नहीं थी तो उन्होंने इसी नियत से रखी। मैंने कहा बच्चों को अच्छी नियाज, उन्होंने छोटे छोटे बियर्स भी डाले। मैंने अपने बच्चों को घर आकर सुनाया, कहते हैं हमें भी साथ ले जाते। लेकिन हकीकतन अगर बड़े को पूरा शीरमाल मिल रहा है तो बच्चे को, अच्छा आप आधा शीरमाल ना दे उसकी पसंद की, उसी रेंज में कोई चीज दे दे, शायद वो बच्चा उस लांटी, उस चिप्स, उस जूस, उस पता नहीं क्या क्या जो सारा वो खाते रहते, अचर मचर करते रहते, उसके लालच में आएगा। शीरमाल बच्चों को पसंद होते हैं, शीरमाल को तो कुछ समझते नहीं है, चाहे वो 20 रुपए का क्यों ना होता, लेकिन उसके बरस आप 10 रुपए का चिप्स दे दे उसे, वो स्लिम्स दे दे, वो क्या मिर्चों से कुट्टे भरे हुए होते चिप्स होते हैं बारीक बारीक, वो दे दे, लगे रहे कुछ 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 कुछ। तो असल मसला यहाँ पर तत्मी के अंदर भी एक मयार है। तत्मी के अंदर आप में से बात मोमिनात को स्ट्रॉबेरी जैम पसंद होगा, पसंद है? नहीं, कौन सा पसंद है? मैंगो, ठीक है, आप लोग, आपको मैंगो जैम पसंद है। आप में से बात मोमिनात को पनीर पसंद होगा, किरी का वो टुकड़ों में आता है। खुलासा, आपकी अपनी एक जाती पसंद नापसंद है। आप इस पसंद को मछली पर अप्लाई करेंगी, झींगे की बजाय, मकोड़े की बजाय एक पनीर का टुकड़ा डाल के लटका दे, मछली आएगी उस कांटे तक? तथमी में अपनी तमा का नहीं, सामने वाली पार्टी की तमा का ख्याल रखना। आप देखिए बच्चे की रिक्वायरमेंट क्या है। मिसाल के तौर पर अक्सर माएं कहां मार खाती हैं, तुम यूं कर लो मैं तुम्हें सूट लेके दूंगी। बच्चों को पता है कपड़े तो माने चारों ना चार बनाने हैं, गर्मियों के भी और सर्दियों के भी, वहां से एक एक बैट बॉल ले दे। तो फिर माएं सोचती हैं 1300 रुपए का आ जाएगा वो वाला जो ये मांग रहा है, इतने में तो 2 सूट बन जाएंगे पहले मार्केट से जाकर। नहीं नहीं, मैं ये नहीं दिला रही। तो एक तो तुम लोगों को इनाम भी दो, तुम लोग फिर भी इंसान बनते। जो आप इनाम दे रही है उसको, उस इनाम से कोई रहमत नहीं है। अब हमारे यहाँ एक कवाहत क्या है कि अब जब हम इस्लाम को नाफिज करने अपने घर में जाते हैं ना, तो बच्चों को जन्नत का लालच देते हैं। 7 साल के बच्चे को आप जन्नत का तसव्वुर कैसे देंगे? आप में से मुझे कोई दे, आपका नाम क्या है? शमा की सिस्टर साबरा, आप मुझे थोड़ी देर के लिए सोचो, 7 साल की बच्ची ठीक नहीं हूँ घर से, लेकिन आप मुझे थोड़ी देर के लिए जन्नत का तो सबूत दे, नमाज पढ़ा करो जन्नत मिलेगी। मैं कहूंगी मैं मरने नहीं चाहती, जन्नत का मरहला मरने के बाद है ना, जिंदगी में तो जन्नत नहीं है, कहाँ बेचारे बल्तिस्तान गिलगित इस्लामाबाद क्वेटा जो मोमिनीन के हालात है, लोग कहेंगे नहीं दुनिया में जन्नत नहीं है। आप मुझे जन्नत का तसव्वुर दें, जन्नत में चॉकलेट होंगी, कैंडीज होंगी, ये होगा, आइसक्रीम होगी, पेप्सी पे कोई रोक टोक नहीं होगी, तुम स्विमिंग पूल रोज जाना, आप मुझे जन्नत का एक तसव्वुर दें। मैं कहूँ ये सब नहीं चाहिए, इसलिए कि इन सबसे पहले मुझे मरना भी पड़ेगा। देते हैं, मैं इस चीज को मानती हूँ हम उसे देते हैं, लेकिन बाजू का हमारे लालच ऐसे भी होते हैं ना कपड़ों वाले, वो कपड़े को उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लुंडा बाजार की कमीज पहन के कहीं चला जाए, या आप उसे लिए कोई ब्रांडेड किसी पाव टावर से जाकर एक टी शर्ट लिया है 1700 रुपए की, उसके लिए दोनों के अंदर फर्क नहीं है। ये आप हैं और मैं हैं जो स्टेटस कॉन्शियस है, मेरे साथ जा रहे इंसान का हुलिया बनकर बनना बना कर जाओ। बस फर्ज करें जिनके घर में जवान साल बेटे हैं वो बाजू का बरमूदा पहन के फिर रहे होते हैं, माँ कहती जरा मुझे मेरी सहेली के यहाँ छोड़ दो, बच्चा कहते चले गाड़ी में बैठे, इस सूलिए में मैं तुम्हारे साथ जा रही, अब उसे सूलिए में कोई कबाहत ही नहीं नजर आ रही, मैंने पहना हुआ है, शुक्र करे बच्चे आजकल कैसे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन है, कहेगा वाजिब तो वाजिब मुस्तहब सतर भी पूरी है, नाव से जानू तक मैंने पहना हुआ, ऊपर टी शर्ट पहनी है, चलना तो चले वरना घर में रहे, मैं नाइट सूट में हूँ पजामा पहना हुआ, हुलिया देखो मेरी सहेली देखेगी क्या कहेगी, इसका बच्चा ऐसा है इसका बच्चा वैसा है, घर में तमीज से नहीं रहता। अब मजे की बात यह कि हम अपने बच्चों को पेट बनाना चाहते हैं पालतू, सर्कस के सुधारे हुए जानवरों की तरह, हम कहें बैठ जाओ वो बैठ जाए, हम कहें खड़े हो जाओ वो खड़े हो जाए। इसीलिए नॉर्मली एशियन मर्द मामाज वाय होते हैं, अम्मा की उंगली पकड़ के चलने वाले, कभी अम्मा उंगली एक मिनट में बात पूरी करूं, अम्मा ने उंगली छुड़ा ली तो वो बेगम भी पकड़ लेते हैं उनको बेचारों को खुद से, अक्सर मर्द कंफ्यूज होते हैं, उन्हें घर के पर्दे खरीदने पड़ते हैं तो भाभी बहन खुफीजात बहन खाला मुमानी की मदद ले लेंगे, खुद से डिसीजन ले लेंगे, ये वाले पर्दे सही नहीं लग रहे ड्रॉप करो इनको दूसरे पर्दे लगवाओ, छोटी छोटी चीजों में हमने उनको कंफ्यूज पर्सनैलिटीज ब्रोटअप किया है। इवन अपने भाइयों को तुम्हें तो कर नहीं चुप रखो, तुम्हें क्या बताओ इस मामले का, जब वो किसी चीज में बोलना भी चाहते ना तो हम उन्हें ये कह के चुप करा दे, चुप रहो तुम्हें क्या बताओ कैसे रिश्तेदारों में लेन देन किया जाता है, कैसे रिश्तेदारों में लेन देन किया जाता है उसे नहीं पता, किस रंग के पर्दे जमाने में चल रहे हैं उसे नहीं पता, जमीन का कारपेट का रंग क्या होना चाहिए उसे नहीं पता, 72 पीस का डिनर सेट दिया जाना चाहिए 36 पीस का उसे नहीं पता, जब उसे कुछ भी नहीं पता तो फिर सोच के आगे छोड़ रहे। हमने पेट बनाया, हमने बिगाड़ा एक जनरेशन को, उसके बाद फिर हम तहदीद और तचमीन, या डरा धमका के अपने बच्चों से अपना काम नहीं करवाते, या हम उन्हें लालच देते हैं। अच्छा तीसरा और आखिरी तरीका जिसकी तरफ मैं सिर्फ इशारा करूंगी वो है तबलीग प्रोपेगेंडा करना, मीडिया कर रहा है आपका, आपको ऐसा लगता है माइक्रोवेव के बगैर जिंदगी अजीरन, गाड़ी के बगैर जिंदगी अजीरन, मेरा मुझे लगता है 2015 में बच्चे कहेंगे आईपैड माँ के बगैर घर काबिल कबूल, आईपैड के बगैर जिंदगी काबिल अजीरन। हर छोटी एक छोटी सी चीज है ये आपके और सबकी जिनके पड़े हुए एक सेलफोन, ऐसा हो गया है कि इसके बगैर जिंदगी अधूरी है, आए हम रहे ना रहे हमारा सेलफोन रहना चाहिए। तबलीग इतना मीडिया इतना प्रोपेगेंडा करो कि आपको ऐसा लगेगा, यकीन करें इस जमाने में वो औरतें अभी मरी नहीं है, वो जनरेशन इतनी पुरानी नहीं हुई जिनके पास 6-6, 7-7 सूट होते थे, पूरा साल चला लेती थी। अब आप देखिए ब्रांडेड कपड़ा पहनना है, यूं पहनना है, यूं करना है, ये मीडिया हमारी जिंदगी पर कैसे असरअंदाज हो रहा है, तबलीग इतनी ज्यादा। आप आज की औरत कहती है तुम मुझे टाइम नहीं देते, तुम यूं नहीं करते, तुमने फलानी बात पकड़ी, छोटी छोटी सी बातों को इतना हाईलाइट किया जाता है कि औरतों को लगता है जिंदगी वाकई में जीरन हो गई है। पुराने जमाने की औरतों से पूछे दुख किसे कहते हैं तो आपको दुख की सही वाली डेफिनेशन बताएंगे। किसी मोमिना के सामने बात चल रही थी, कराची में मौजूद हैं, दुख किसे कहते हैं, कहते जिसे ये दुख बकवास करे ना तो बकवास है, ये दुख नहीं है। मैंने कहा आप किसी दुख की मिसाल देंगे, कहने की मेरा भाई मर गया जवान, सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया उसने, जहर खा लिया था, गोलियां खा ली थी, पता नहीं, खैर पुलिस केस बन गया, ले दे के मामला खत्म हो गया, लेकिन जब तक दे दिलाकर मेरे फादर ने मामले को दबाया उतनी देर तक रात हो गई थी, ये काफी पुरानी बात है। कहने की डेड बॉडी घर पर आ चुकी थी एम्बुलेंस के जरिए। मैं पूरी रात अपने भाई को उस मैयत के पास अकेली रही, मैंने अपनी चचियों से कहा कोई रुक जाए, कोई नहीं रुका, ममानियां खालाएं फूफियां दादी नानी सबके पास बाहर इशूज थे, ब्लड रिलेटिव्स के पास सास है, मतलब खाला से कहा तो कहने की मेरी सास है, वो कहेंगे तुम यहाँ बच्चों को छोड़ के सुबह नाश्ते की परेशानी भी है वो, तो कहने की उसे कहते हैं मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दुखी रात वो थी। इससे बड़े बड़े दुख सहे हैं लोगों ने, सहते हैं लोग, इसी मुआशरे में रहते हैं, लेकिन हम छोटी छोटी सी बातों पर इतना प्रोपेगेंडा हो जाता है। मजे की बात है हमें तबलीग करने वालों की भी कमी नहीं है, हमारे सर्कल में तबलीग, तबलीग से मुराद हमारे दीनदार माशरे के जहन में तबलीग का क्या मतलब आता है, किसी जगह जाके मजलिसें पढ़ना, दर्स देना, वर्कशॉप करवाना, प्रोग्राम्स कर, नहीं, तबलीग यानी प्रोपेगेंडा करना। ये प्रोपेगेंडा किस तरह से किया, तबलीग और तत्मी को दोनों चीजों को एट अ टाइम माविया से सीखिए। सीखे से मुराद नाउज बिला ये नहीं कि उस शकी की पैरवी करें, मैं मिसाल दे रही हूँ तारीख इस्लाम से, तारीख तशैयों से आपको एक मिसाल दे रही हूँ। कूफे के बच्चों के सराने, वो छोटे छोटे से लैम के बच्चे, वो क्या उसको कहते हैं, भेड़ का बच्चा, छोड़ दिए जाते हैं। जब बच्चे इस जानवर से मानूस हो जाता है तो इस बच्चे को, इस जानवर के बच्चे को ज़िबाह कर दिया जाता है और कहा जाता है कि ये काम अमीर मोमिनीन ने किया। प्रोपेगेंडा इतना हुआ कि शाम के लोगों को ताज्जुब था कि मौला मस्जिद में क्या कर रहे हैं। प्रोपेगेंडा, अगर आप प्रोपेगेंडा को समझना चाहते हैं, आप करबला को देखिए। इस पॉइंट ऑफ व्यू से सबने कहा खारजी खारजी खारजी, लोगों ने पत्थर बरसाए, पत्थर बरसाने वाले मुसलमान थे, शहजादियों की बेरिदाई को देखकर हंसने वाले मुसलमान थे, हैया अल सलात, हैया अल फलाह, हैया अल खैरिल अमल, ये सब कहने वाले मुसलमान थे, लेकिन इसके सबके बावजूद ये प्रोपेगेंडा के नुकसान थे, ये प्रोपेगेंडा के नुकसान थे। यानी ये प्रोपेगेंडा एक मीडिया आपके अंदर एक भूखी झूठी भूख को पैदा करता है। इसका काम यही है आपका सेल्फ कंट्रोल खत्म हो जाए। इस्लाम ये चाहता है मेरे और आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल हो, वाजिब रोजे के नाम पर, मुस्तहब रोजे के नाम पर। और ये जो इतनी रिवायतों का ढेर है, आप अपने सेल्फ कंट्रोल के हवाले से ख्वाहिशात के असीर ना हो, आदतों के गुलाम ना बनो। मौला की बात से अमीर मोमिन के ऐसे इंसान हैरान हो जाते हैं। एक जगह पर फरमाते हैं बेहतरीन आदत आदत ना करना है। हाय मौला, शाम की चाय की आदत, दोपहर में आंखें बंद करने की, वैसे तो मेरी नहीं है, नसीब में नहीं है दोपहर में सोना, लेकिन दोपहर में सोने की आदत, सुबह देर तक सोए रहने की आदत, रात में कुछ, इवन रात में कुछ पढ़ के सोने की आदत। ये किताब मेरे हाथ में है, मीठे बोल में जादू है, डील की, थोड़ी देर पढ़े फिर अच्छी नींद आएगी, ये करके सोने की। हम आदतों के गुलाम हैं, हम आदतों के असीर हैं। आइमा चाहते हैं हम आदतों की असीरी से निकल जाए, मीडिया चाहता है आपको इससे ज्यादा असीर बना लो, इससे ज्यादा। अब मैं आखिरी मिसाल आपकी खिदमत में दूं और आपकी जहमत को खत्म कर दूं। देखा मैं पूरा ही नहीं कर पाई जो मैंने इतनी मेहनत से आज दोपहर सारी लगा के लेक्चर लिखा था, लेकिन हमारे एक उस्ताद ने कहा कि इंसान की रूह में तत्मीर और तहदीर से ज्यादा जो चीज असरअंदाज है वो है तबलीग। उसकी एक आसान सी मिसाल हमारे उस्ताद बुजुर्गवार के को निसार करते हुए बहरहाल कायदे हयात में है, उनसे मैंने एक सवाल किया कि हमारी प्रायोरिटी बाज़ूकात हम तय नहीं कर पाते किसके पास है। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक बच्चा है 4.5-5-6-7 साल का, मेरी नन का भी, या मेरी किसी दोस्त का, या मेरी किसी बहन का, या मेरी किसी भाभी का बच्चा है इसी 9 साल का। ये मोमिना मेरे घर आती हैं, बच्चे की एक सिफत और खसलत है, ये जाएगा अंदर से अपनी नए खिलौने लेकर आएगा, ला कर इसे दिखाएगा, ये देखो ग्लास, ये सामने वाला बच्चा फितरी सी बात है ये ग्लास मांगेगा। आपके बच्चे का क्या रिएक्शन होगा, नहीं दूंगा। ऐसे में माओ के दो रिएक्शन होते हैं। आपका बच्चा, किसी भी मोमिना का बच्चा, ठीक है मुझे तो पता ही नहीं कौन बैचलर है और कौन शादीशुदा है, बोलते हुए भी डर लगता है, लेकिन किसी मोमिना का बच्चा मेरे घर पे आया, मेरे बच्चे ने उसे अंदर से गाड़ी निकालकर, डॉल निकालकर, जो भी उसका टॉय है खिलौना है दिखाया, दे दो। अच्छा अगर मेरे सामने वाले से रिश्ता हसास है ना, हसास रिश्ते, तो मुझे नहीं बोलने की जरूरत ना, होते है ना मेरे आयजा और अकरमा भी ये तकरीरें बाज़ का सुन लेते हैं, इसलिए डर लगता है। हसास रिश्ते आप समझ गए ना, हसास रिश्ते। अब मैं प्रेशराइज हूँ कि बात कहाँ तक चली जाएगी, बेटा दे दो दे दो। पप्पो क्या कहेंगे, कितना बदतमीज है, तमीज नहीं सिखाई माँ ने, देने का तरीका नहीं सिखाया। बच्चा कह नहीं दूंगा नहीं दूंगा नहीं दूंगा, जिद पे आ गया, पैर पटक रहा है, गोद में लेके भेज के बैठा है। अब मेरे पास दो तरीके हैं, बुलाया किचन में ले गए, सुलझी हुई माँ यही करती है, बच्चों को किसी के सामने डांट टपट फिटकार नहीं करती, अंदर ले जाकर खूब वही हाल करती है जो हमारी पुलिस ड्राइनों में ले जाकर मुस्लिम क्या करती है, दे दो अभी ये चली जाएंगी, उसके बाद मैं हूँ और तुम, और उसे कुछ चीजें सिखाई जाएंगी जो किचन में होती है। मिसाल के तौर पर एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद साहब, Allah'a emanet olun. मदरसे वाले मुझे तो वैसे निकाल दे, डर देने के लिए बुलाते ही रहते हैं सुनाने के लिए। लेकिन मैंने उसे डरा धमका दिया, इस बच्चे ने गाड़ी छोड़ दी, लो तुम खेलो। ऑप्शन नंबर वन, मैंने उसे किसी भी चीज से डराया, छिपकली से, कॉकरोच से, अंधेरे कमरे में बंद कर दूंगी, बाथरूम में बंद कर दूंगी, अल्लाह बाबा को दे दूंगी, बहुत सारी धमकी होती है ना मियों के पास, तो जेब में नुस्खे होते हैं डॉक्टर्स की तरह। ये एक तरीका था। दूसरा तरीका ये था कि दे दो, मैं अपने बेटे को सनबाथ दे जाऊंगी, जमजमा ले जाऊंगी, वो KFC की डील जो बड़ा सा बोर्ड देखा था, वो 175 वाला बर्गर वो ले दूंगी, दे दो दे दो दे दो। उसने फिर तमामे दे दिया। अच्छा, ऐसे में आप अपने बच्चे की रूह पर इतनी बुरी जर्ब लगा रहे हैं कि कोई दुनिया में उसे ऐसा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैंने अपने उस्ताद से कहा ये दोनों तरीके सही है, कहा नहीं, कुरान कहते हैं वतुसालूना बिही वल अरहाम, तुमसे तुम्हारे सिले रहम का सवाल किया जाएगा, तुमसे तुम्हारे बच्चे का सवाल किया जाएगा, भाई के बच्चे का सवाल नहीं करेगा। परवरदिगार मुझे पुलिस रात पर बालों के बल, पैर के बल, हाथ के बल लटका कर पूछेगा, ये बच्चे तुम्हें दिए थे, तुमने इनकी बाबत क्या किया, इन पर जुल्म रवा रखा, जिस्म की कितनी फिक्र है हमें, जिस्म की कितनी फिक्र है हमें, वैक्सीनेशन लगने चाहिए, खुला दूध नहीं पिलाना चाहिए, दूध दिन में एक दफा देना चाहिए, अंडा खाना चाहिए, डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए, स्कूल भिजवाना चाहिए, सब सब सब। रूह के अंदर भी तो कुछ जरूरतें लगाते ना। मेरे पास वक्त नहीं है वरना मैं आपको एक छोटा हाथी की दास्तान सुनाती कि रूह की जरूरतें इंसान के साथ कब्र तक जाती है। मुमकिन है, घर से ऐसा नहीं हुआ, मेरी अम्मा ने मुझे कच्चे दूध पे बड़ा किया, मैं शायद मुमकिन है किसी बीमारी का शिकार हूँ, शायद ना, मेरा सेल्फ कंट्रोल इतना स्ट्रांग हो कि मैं किसी भी बीमारी का शिकार नहीं, लेकिन जो जरूरतें मेरी रूह पर आ चुकी हैं उन्हें मैं मरते दम तक भुलाने वाली नहीं हूँ। मैंने उनसे अपने उस्ताद से कहा बस मैं क्या करूँ, कहा दोनों तरीके गलत, क्यों काटी एक पर भी दूसरे पर भी, कहा तीसरा तरीका तबलीग का, तुम्हें तुम्हारा दिल चाह रहा है तो खुदा की खातिर दो, अगर ये टूट भी गया ना तो अल्लाह तुम्हें इससे बेहतर देगा। 4.5-5 साल के बच्चे को ये समझ में आ जाता है, यानी अगर आपने उसे दीनी माहौल दिया, आजकल के बच्चे तो भाई अफलातून है, वो पैदा होते हैं तो सुकरात के फुफा होते हैं, तो इसलिए वो समझ गया, और अगर वो नहीं समझ रहा लेट हिम या हर फ्री, फिर उसे आजाद छोड़ देना है बिस्मिल्लाह, नहीं देना 100 बिस्मिल्लाह, हम सामने वाले से खुद ही हैंडल कर लेंगे। आप माँ हैं, उस बुलेट प्रूफ शीशे की तरह हो जो हमारे हुक्मरानों के आगे होता है तो उनकी तकरीर का अंदाज ही देखने वाला होता है। माँ को दिश की तरह होना चाहिए, दिश कहते हैं किले को, हिसार को। मैं माँ के पास बैठा हूं, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हम अपने बच्चे को डिग्रेड करते हैं, हम अपने बच्चे की ख्वाहिशात का गला घूंढते हैं, हम अपने बच्चे को बुरा भला कहते हैं, लालच देकर उसकी रूह को खराब करते हैं, डरा धमका कर उसकी रूह को खराब करते हैं। जिनके लिए करते हैं वो हमारे मरने के बाद हमें याद करने वाले नहीं है, हमारे जिस्म की रूह की जिंदगी की परेशानियों में हमारे काम आने वाले नहीं है। खुदा के रास्ते पर चलो। जब मैंने उसे कह दिया ये टिश्यू आंटी का है, आपने इसे हाथ नहीं लगाना, तो अगर ये टिश्यू उसका है तो आंटी को भी हक नहीं इसे हाथ लगाए। बहुत ही प्यारा नुक्ता है, अगर समझ गए तो आखिर तक इंसान के काम आएगा। ये बैग मेरा है, आपको हक नहीं है, आप इसे बगैर इजाजत के खोलो, इसके अंदर अम्मा की मम्मा की सीक्रेट चीजें भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई सीक्रेट चीजें सिर्फ टिश्यू का ढेर है, इसके बावजूद यू कांट टच इट, आप इसे छू नहीं सकते। और अगर यहाँ पर उसका स्कूल बैग या उसकी कोई चीज पड़ी है तो मुझे भी उससे इजाजत लेनी चाहिए। मैं मुसलमान हूँ, मेरा इख्तियार है, वो भी मुसलमान है, उसका इख्तियार है, उसके इख्तियार को डिनाई ना करें। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कितनी खुशी आप सारों को छुट्टी की ना, आपके साथ साथ मुझे भी छुट्टी है, छुट्टी की खुशी है, लेकिन कितना ही अच्छा उसी खुशी वाली आवाज से आप एक अच्छी सी सलवात पढ़ दे मोहम्मद
Allah Jalla 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 Jalla